एक बच्चे की दुर्लभ बीमारी के लिए विशेष करके आज सुबह को प्रार्थना में याद रखेंगे तो निश्चय ही हम सब करना चाहेंगे। वे डॉक्टर यहाँ तक जानते भी नहीं हैं, वे इस बीमारी को कोई भी एक नाम देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन्हें बनाया गया है कि वे इसे कोई भी एक नाम को दें। वे नहीं जानते कि यह क्या था, और लेकिन मसीह जानता है कि यह क्या है। मैं आपको बता सकता हूँ कि यह क्या है, यह एक शैतान है। यह सही बात है, शैतान है। जो भी वे नाम को देना चाहते हैं दे, क्योंकि यह उन पर है, लेकिन यही वो है, देखो एक दुष्ट आत्मा। अब आइए हम सब एक साथ मिलकर, एक बार फिर एक साथ मिलकर विश्वास करो। आइए सच्चाई से अब हर एक जन आकर केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो। सब कुछ संभव है, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो, सारी बातें संभव है। केवल प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है। बहन आइए अब इस लड़की के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, ऐसा प्रतीत होता है मैं इसे अपने मन से नहीं निकाल सकता हूँ। वो छोटी लड़की वहाँ पर मर रही है, वह किसी की तो प्रियजन है, वह आपकी सृष्टि है, और शैतान उसके युवा जीवन को छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मसीह के नाम में आप उस मृत्यु के हाथ को रोक देंगे, उस शत्रु को पीछे हटा देंगे। आप प्रभु हैं जो उस लाल समुद्र की दीवार को दोनों ओर खड़ा कर सकते हैं और इसराइल के बच्चों को दे सकते हैं। आपकी वंशावली के लिए आपने एक सुरक्षित यात्रा को दिया, समुद्र को पार किया और वे प्रतिज्ञा देश के अंदर गए। परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक रुकावट को पीछे कर देंगे और उस बालक को जीने देंगे। यही हमें मांगने के लिए दिया गया है, और जब कुछ लोगों का झुंड आप पर विश्वास कर रहा है, हम उस बच्चे की चंगाई को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज इस आभारी हृदय के साथ मैं आपके पास फिर से प्रभु यीशु के नाम में आता हूँ। मैं लुइजियाना से थोड़ा जल्दी ही घर पर आ गया। मैंने सोचा हो सकता है यदि मैं रविवार से पहले यहाँ पर आ जाऊँ तो मैं संडे स्कूल को ले सकता हूँ, और फिर वहाँ पर मौसम अत्यधिक गर्म था कि हम आज सुबह यहाँ पर सुहावना मौसम है, वहाँ लुइजियाना से यहाँ ठंडा है। आप लुइजियाना में कभी भी बिना पंखे के इमारत में नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ पर एयर कंडीशन होना है या तो आप मूर्छित हो जाएंगे। और सो मैं आ गया हूँ इसलिए कि मैं बस एक या दो दिन के लिए विश्राम कर लूँ इससे पहले कि मैं यहाँ से फिर से वापस जाऊँ अगले हफ्ते नॉर्दर्न सस्कैचवान में, जो ऊपर प्रिंस अल्बर्ट पर है। यहाँ से दूर दूर तक संसार के लिए सड़कें जाती हैं, दूसरी तरफ से यहाँ से दुनिया के लिए सारी सड़कें जाती हैं, और कोई रास्ते नहीं है और सिवाय इंडियंस और एस्किमोस के, जो पीछे अंदर के भाग की तरफ है जहाँ पर इस बार हम जा रहे हैं। तो इस सभा पर हमारे पास सारे कनाडा से बहुत से लोग होंगे, उनमें से कुछ लोग कोलंब से आएंगे जो पश्चिमी तट पे है, उन्होंने कहा वे वहाँ पर आ रहे हैं। और निश्चय ही आप लोगों से प्रार्थनाओं की अपेक्षा रखता हूँ कि परमेश्वर हमसे मुलाकात करे और हमें पूरी तरह से उसकी महिमा के लिए असाधारण भरपूर महान सभाओं को दे। ऐसा चार या पांच वर्षों से होता आ रहा है जब से मैं कनाडा में रहा हूँ, और मेरे कुछ बहुत ही कुलीन मित्र वहाँ पर हैं जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, और वे कलीसिया जाने के प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी ठंड पड़ने दो, वह कंबल को ओढ़ लेते हैं और बर्फ की घोड़ा गाड़ी लेकर और उस पर बैठकर 40 मील तक घोड़े को चलाते हैं जिससे कि कलीसिया पहुंच सके। वे बर्फ के टीलों में से होते हुए चलकर जाते हैं, और जो कुछ भी हो, जवान या बूढ़े होने दो, वह सब झुंड एकत्र होते हैं और एक परिवार दूसरे परिवार के पास जाता है और वे चलना आरंभ करते हैं और वे निकलते हैं। ये उनका बलिदान है जिसे वे करते हैं। यही कारण है उन्हें सभा से बहुत कुछ मिलता है। जहाँ पर कोई बलिदान नहीं है वहाँ पर आपको सभा से इतना कुछ नहीं मिलेगा। आपको सचमुच में नीचे आकर और कुछ तो करना होगा जो वास्तव में बहुत तकलीफ देता है। कुछ चीजों को एक तरफ रखना है और व्यवसाय को बंद करना और ऐसा और वैसा करना ताकि कलीसिया में पहुंच जाएं और परमेश्वर को बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं और आप वहां जाने के लिए एक बलिदान को करते हैं। ये उसके बाद ही आपको इसमें से कुछ तो मिलता है। यह बस मेरे बच्चों के जैसा है, बिली पॉल। मैंने सोचा मैं जब मैं एक बालक था मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी माँ हमेशा ही हो सकता है एक मिठाई के टुकड़े को लाती थी और उसे नापती दो या तीन टुकड़े करके हर एक को दे देती थी। हो सकता है क्रिसमस के लिए हमें एक छोटा सा नकली या छोटी ढक्कन वाली बंदूक मिलती थी या इसी तरह से कुछ और। और मैं दूसरे बच्चों को देखता, उनके पास पहियों वाली साइकिलें और चीजें और अच्छे कपड़े और गर्म जैकेट होती थी और मुझे बस बहुत ही दुख महसूस होता था। मैंने कहा यदि मेरे पास कभी मेरे अपने बच्चे होंगे मैं उनके लिए वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं मेरे बालकों के लिए भूखा रहना पसंद करूंगा ताकि मैं मेरे बच्चों को कुछ दे सकूं। और मैं इस तरह से जिया। जब बिली एक छोटा लड़का ही था मैं उसके लिए एक छोटी सी साइकिल लेकर आया और मैंने उसे सब कुछ ला कर दिया। और मेढा उसने सब कुछ करने की कोशिश की, उसने नए कपड़ों का और दूसरी चीजों को लेने का बलिदान किया ताकि बिल्ली को कुछ मिल जाए। लेकिन आप जानते हैं कि हम क्या देखने लगे। मैंने उसके लिए एक तीन पहियों वाली साइकिल ला कर दी और एक छोटा सा तीर कमान और उसे हर एक चीज को दिया। मैंने उसे एक चम्मच और छड़ी को लिए हुए देखा। वो पिछवाड़े में कहीं तो खुदाई कर रहा था, देखा। मैंने कहा वो आने वाले वे इस तरह से नहीं होंगे, समझे। तुम बस किसी को भी उनके हाथ में कुछ भी दे दो, वे इसे नहीं चाहेंगे। यह कुछ तो है जिसके लिए आपको बलिदान करना होता है और इसी तरह से उद्धार है। यह एक संपूर्ण बलिदान है, ऐसा है भाई रॉय। यह एक बलिदान है जो तुम्हें हर रोज करना है। कुछ तो ऐसा जिससे आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएं और कुछ तो करें। और मैं जानता हूँ यह आप सबके लिए आज सुबह एक बलिदान है, इस गर्म इमारत में बैठना। और जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, आइए हमारे मनों को उस सबसे बड़े बलिदान की ओर रखें जिसे मनुष्य जाति के लिए तभी किया गया था जो यीशु मसीह था, जब उस पर भार रखा गया ताकि धरती पर आकर हमारे स्थान पर मरे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन उसका प्राण अधोलोक में उठा लिया गया और वहाँ पर तीन दिनों और तीन रातों तक था और तीसरे दिन पर वह जी उठा और अब ऊंचे पर उठाया गया, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने पर बैठा हुआ है। उसकी प्राचीनता को अंगीकार करने पर हमारे लिए बिचवाई को करता है और उसका अनुग्रह जिसका हमारे लिए प्रयोजन किया गया है। अब वहाँ सभा में जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, बहुत ही गरीब। किसी को उसकी गायों को बेचना है, उनकी दो या तीन भेड़ों को, या कुछ तो ऐसे ही जिससे कि वह सभा पर पहुंच सके। वे पुराने एस्किमो हो सकता है कि वे उनके चमड़ों को बेचने के लिए लेकर आए, जिसकी उसे सचमुच उसके परिवार को सभा में लाने की आवश्यकता है। जो इंडियन व्यापार करने वाले हैं वे भी उसी तरह से करते हैं। अब हम कम से कम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें महान चीज को दे। अब यह गर्मी हो रही है, मैं आपको बहुत समय तक नहीं रोके रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम आज सुबह हमारे मनों को इस पर स्थिर करें। इससे पहले हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया और उसकी परिस्थिति। और अब मैं महसूस करता हूं कि कुछ दिनों पहले कलीसिया के लिए मैंने शेवरेपोर्ट लुइजियाना पर मुझे एक संदेश दिया गया था और मैं सोचता हूँ यह कलीसिया की स्थितियाँ हैं और हम आज सुबह इसके साथ परमेश्वर का सामना करने जा रहे हैं। और प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि हमारी सहायता करे, वही दृष्टिकोण लेने का लक्ष्य न रखें लेकिन परमेश्वर से सहायता मांगे इस दिन के लिए जिसमें हम रह रहे हैं। और केवल इसके पहले यह शानदार पुरानी बाइबल है लेकिन इसी में अनंत जीवन की सामग्री को रखा गया है। और याद रखना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उसके वचन से अधिक नहीं है और हम हमारे वचन से अधिक नहीं है। मैं और आप एक भिन्न स्थान पर खड़े हैं और यदि हम कुछ कहते हैं अवश्य ही अब आप और मैं भिन्न स्थान में हैं, समझो। हम दोनों कह सकते हैं ओह मैं एक फलाना काम को करूंगा। हम हमारे हृदय में इरादों को रखते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम इसे नहीं कर सकते हैं जिसे हमने करने के लिए कहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अनंत है और वह हर एक बात को जानता है और हर एक चीज को जो कभी थी होगी या इसलिए वह एक ऐसे ही अल्प बयान को नहीं दे सकता है। वह जानता है कि वह इसे कर लेगा। और अब्राहम जब वो 100 वर्ष का था, उसने उन बातों को बताया जो थी ही नहीं और हालांकि वो थी। अब मैं इसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए जिन बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब्राहम ने उन चीजों को बताया जो थी ही नहीं और हालांकि वो थी। यह मान रहा था कि वो जिसने उसकी प्रतिज्ञा की थी, जो इसे पूरा करने में सक्षम है या उसे पूरा करता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी। अब जब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया जब वो 75 वर्ष का था और सारा 65 वर्ष की थी कि उन्हें एक बालक होने जा रहा है, क्योंकि यह पूरी तरह से असंभव बात थी, और उसने विश्वास किया और बालक के लिए देखने लगा और 25 वर्षों तक ऐसे माना कि लगभग बालक वहीं पर है बालक के आने से पहले। और अब्राहम 100 वर्ष का था जब बालक ने जन्म लिया था और सारा 90 वर्ष की थी, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था और उसने उन चीजों को बताया जो थी ही नहीं और हालांकि वो थी। अब ऐसा ही बीमार और पीड़ित लोगों के लिए है जिनके लिए प्रार्थना होनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है या आपको कोई भी बीमारी हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, जब आप मसीह को उसके वचन को ग्रहण करते हैं तब आप उन बातों को बताते हैं कि वे बातें हैं, और जबकि वो बातें हालांकि नहीं होती है यदि वे परमेश्वर के वचन के विपरीत है तो। अब परमेश्वर ने कहा विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेगी, तो यदि परमेश्वर ने कहा है बात वहीं पर खत्म हो जाती है। तब आइए हम हमारे मनों को स्थिर करें, आशाओं को आप ऐसे व्यवहार करें हालांकि यह हो चुका है, यह तो बस पहले से ही पूरा हो चुका है जब हम इसे ग्रहण करते हैं। उद्धार उसी तरह से है, हम इसे विश्वास करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय में इसे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सामने चलते हैं और मसीह को हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। यदि आप आज सुबह यहाँ पर हैं और एक पापी हैं और नहीं बचाए गए हैं और आप चंगाई को पाना चाहते हैं, आप बीमार हैं, तो पहले परमेश्वर को पालें, उसे अपना एक उद्धारकर्ता की नाई ग्रहण करें, तब जो बीमारी थी वहाँ से चली जाएगी। जो कुछ भी यह है केवल अपने संपूर्ण विचार को डालें हर एक चीज के लिए कि आपके पास है उस संपूर्ण मनुष्य पर जो यीशु मसीह है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अब इसे अपने मन में रखें, क्योंकि मैंने इन कुछ शब्दों को उन बीमार और पीड़ित लोगों के लिए कहा है, तो मैं आज सुबह कलीसिया और उसकी परिस्थिति इस पर बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि हालांकि दैविक चंगाई अद्भुत है, लेकिन जब मैं शिवरीपोर्ट में था, जब मैं वहाँ पर था, मेरे पास केवल लगभग 3 चंगाइयों की सभा थी, 3 हो सकता है 4 ज्यादा से ज्यादा इन 11 दिनों के अंदर। दैविक चंगाई में ज्यादा समय बिताने से अधिक मनुष्य के प्राणों के लिए प्रचार करना ये अति आवश्यक है। भले ही जो लोग बीमार और आवश्यकता में हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकता है और यह सारे संसार भर में पहले से ही प्रमाणित हो चुका है कि वह करता है। लेकिन अब मुख्य चीज प्राण के लिए है जो कभी नहीं मरेगा। यह शरीर मर जाएगा लेकिन प्राण कभी भी नहीं मरता है, और हमें उसी स्तर पर बने रहना अवश्य है और परमेश्वर के साथ निष्कपट रहना है। मैं हमेशा ही इसे कहता हूँ, मैं हर एक चीज को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं उस नदी पर उस सुबह को आऊंगा, मैं वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं चाहता हूँ। मैं अपने हाथों में अपनी टिकट को चाहता हूँ मेरे नाम की प्रतीक्षा करते हुए। और मैं कहना चाहता हूँ जैसे पहले समय के पौलुस ने कहा, बाय क्रिस्ट मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ, कि जब वो मरे हुओं में से बुलाएगा मैं बाहर आऊंगा, मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ। सो अब जो किताब का लेखक है, आइए हमारे सिरों और हृदय को कुछ क्षणों के लिए उसके सामने झुकाएंगे। और परमेश्वर हमारे पिता, हम अब आपके पास आते हैं ताकि आपसे मांग सके कि आप हमारे लिए वचन को खोल दें। हम पन्नों को पलट सकते हैं, लेकिन केवल पवित्र आत्मा ही वचन को खोल सकता है। इसीलिए हमारे लिए आज सुबह इसे खोल दे पिता, और हमें आपके अनुग्रह को बहुतायत से अत्याधिक तरह से दीजिए। हम आप पर रुके हुए हैं और होने पाए वह पवित्र आत्मा वचन के अंदर चला जाए और ये मनुष्य के होठों से निकलकर मनुष्य के हृदय के लिए दे दे, और होने पाए वह इसे लेकर हर एक हृदय में स्थिर कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें इसकी आवश्यकता है। और जब सभा समाप्त होती है, हम अपने घर की ओर जाने को तैयार होते हैं। हम विनम्रता से अपने सिरों को झुकाकर आपको धन्यवाद और स्तुति दें, क्योंकि जो कुछ हमने आपसे सीखा है और आप जो कुछ भी हमारे लिए कर चुके हैं, उसके लिए मसीह के नाम से हम इसे मांगते हैं, आमीन। वचन को पढ़ेंगे संत यूहन्ना के पहले अध्याय की ओर। जिनके पास बाइबल है और मेरे साथ इसे पढ़ना चाहते हैं या एक विषय के लिए इस पर चिन्हित करना चाहते हैं, और हम वचन से विषय को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा वचन में से उस विषय को लेकर हमें दे देगा। हम इसे पढ़ सकते हैं, हम जो इसे पढ़ने में सक्षम हैं इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ही इसमें से उस विषय को बाहर ला सकता है। हम शब्दों को पढ़ सकते हैं क्योंकि यह उसका वचन है, लेकिन बाद में उस विषय को परमेश्वर के द्वारा दिया जाना है। अब संत यूहन्ना पहला अध्याय 28 पद से आरंभ करते हुए और आगे 32 पद तक पढ़ेंगे। ये बातें यरदन के पार हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। और मैं इस अंतिम 32 पद को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। अब होने पाए प्रभु इस वचन पर उसकी आशीषों को जोड़ दे। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक वचन को पकड़ने का यत्न करें, यदि हम कर सकते हैं तो। क्या आप मुझे पीछे ठीक से सुन पा रहे हैं? तो ठीक है। क्या आप उस तरफ पीछे सुन पा रहे हैं? यदि आप सुन पा रहे हैं तो अपने हाथों को उठाएं, ये अच्छी बात है। अब मैं आज सुबह आपसे दृष्टांत पर बात करना चाहता हूँ, इस तरह से जो यहाँ तक कि लगभग कलीसिया में नहीं आने वाला व्यक्ति भी यहाँ समझ सकेगा। अब हम कलीसिया आते हैं जिससे कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम खुद को बेहतर व्यक्ति बनाएं, बेहतर मसीह, बेहतर नागरिक, बेहतर पिता, बेहतर माता, बेहतर पड़ोसी बनाएं। हम आते हैं क्योंकि मसीह ने हमें बताया है, यदि तुम आकर और मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो, जहाँ पर दो या तीन या उससे अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वह हमारे साथ होगा और इसे हमारे लिए प्रदान करेगा। इसलिए इससे अधिक और आज हमारे लिए क्या बेहतर होगा, इससे अधिक यह जानना कि हम कलीसिया पर हैं अपने आप को सुधारने के लिए, ताकि हमारी समझ को बढ़ाए। कितने लोग कहेंगे यही वो बात है जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ? आइए देखें, मैं एक बेहतर समझ को चाहता हूँ। और हमारे पास एक बेहतर समझ नहीं हो सकती है जब तक, और यदि हमारे पास एक परमेश्वर की समझ होने जा रही है तो उसे परमेश्वर के वचन से ही आना है, क्योंकि ये वचन ही है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हमारे भूखे प्राणों को भोजन दे, और पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेजा गया है ताकि परमेश्वर के वचन को ले और हमें वचन के द्वारा खिलाए। आप इसे समझे? देखो, हम पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है ताकि परमेश्वर के वचन को ले और हमें दे जैसे हमारी आवश्यकता होती है। अब मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस तरह का प्रयोजन किया है। क्या आप आनंदित नहीं हैं कि वह हमें खिलाएगा? हम उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं। हम थोड़ा सा इस पर बोलने जा रहे हैं, भेड़ पर, और हम परमेश्वर के तिगुने अस्तित्व हैं। और जब वो हम पर पूरी तरह से नियंत्रण को ले सकता है, वो हमें अगुवाई कर सकता है और हमारा नेतृत्व कर सकता है। अब परमेश्वर इससे बहुत ही प्रसन्न हुआ कि जब उसने धरती पर यीशु को भेजा, इससे उसे प्रसन्नता हुई कि उसे प्रतिनिधित्व करे एक जानवर की नाई, और वह जानवर मेमना था। बहुत पहले आदि में अदन की वाटिका में यीशु मसीह के आगमन की जो पूर्व छाया थी, परमेश्वर ने मेमने को बलिदान किया या एक मेमना होना था एक बलिदान की भेंट के स्थान पर, जो मसीह के आगमन की पूर्व छाया है। अब मैं हमेशा ही चकित होता था क्यों परमेश्वर ने मसीह को एक जानवर की नाई पूर्व छाया किया होगा, एक पशु की नाई। लेकिन हम इस बात को देखेंगे क्यों ये मेमना था, उस कारण को, जो उसने एक मेमने को चुना, और एक मेमना धरती की सारी सृष्टि में सबसे विनम्र है। वहाँ इससे ज्यादा विनम्र और शिथिल नहीं है उस एक छोटे से मेमने से। पूरी तरह से निर्दोष, आत्मनिर्भर नहीं होता, वो अभिमानी नहीं होता है। यह एक सुशील, विनम्र, छोटी सी सृष्टि है। और जब परमेश्वर मसीह को संसार के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसने एक मेमने में उसे प्रतिनिधित्व किया। अब लेकिन जब परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा खुद को स्वर्ग से प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, उसने उस सबसे नम्र, दीन में प्रतिनिधित्व किया। उन सारे पक्षी में से जो आकाश में उड़ते हैं, वह है पेंडुकी। इस पेंडुकी से और अधिक सुशील पक्षी कोई नहीं होगा। मैंने पक्षियों के जीवन और जंगल के जीवन पर थोड़ा सा अध्ययन किया है। हर एक पक्षी जो आकाश में उड़ता है, पर जो पेंडुकी होता है, उन सबसे भिन्न ही है। पेंडुकी एक प्रेमी पक्षी है, पेंडुकी सुशील है, और पेंडुकी के पास कोई पित्त नहीं होता। यही केवल पक्षियों के परिवार से है जिसके पास एक पित्त नहीं होता। इसी कारण से आप पेंडुकी को कभी कहीं पर भी यहाँ वहाँ जाते नहीं देखेंगे, सिवाय जहाँ पर दाना और बीज हो। अब उस जहाज में वहाँ एक पेंडुकी था, और पेंडुकी को बाइबल में बहुत से स्थानों पर प्रतिनिधित्व किया गया है। यह पवित्र आत्मा का चिन्ह है। और मेमने को भी बाइबल में बहुत से स्थान पर प्रतिनिधित्व किया गया है, जैसे मसीह की नाई प्रकाशित वाक्य में, और वहाँ पीछे उत्पत्ति की किताब से होते हुए, और वैसे ही पेंडुकी को भी किया गया है। और उत्पत्ति की किताब में पेंडुकी जहाज में था जो वहाँ पर बैठा हुआ था, और बाकी के हवा में उड़ने वाले पक्षियों के साथ बसेरे पर बैठा हुआ था, और उसमें से एक डोम था, एक कौवा। और एक कौवा, मैं सोचता हूँ वो पक्षियों में से सबसे गंदा पक्षी है। एक कौवा और एक जय चिड़िया, मैं सबसे गंदे पक्षियों के विषय में सोचता हूँ तो हम उसे देख सकते हैं। कौवा बहुत ही लंबे समय तक जीने वाला पक्षी है, और वह जीता है, उन्होंने दावा किया है। और कभी कभी वे 200 या 300 वर्षों के लिए जीते हैं, और उस कौवे से और एक तोता उससे और अधिक जीता है। लेकिन एक पेंडुकी एक ऐसा जानवर है या एक ऐसा पक्षी है जिसके पास कोई पित्त नहीं होता है। अब वह कौवा यहाँ वहाँ बैठकर मरी हुई लोथों को खा सकता है। आप कभी भी पेंडुकी को यहाँ वहाँ मरी हुई लोथों के ऊपर बैठकर खाते नहीं देखेंगे। वो इस पर नहीं खड़ी हो सकती है, इसकी दुर्गंध उसके नाक में जाएगी। वो इस पर नहीं खड़ी हो सकती है, वह इसे बीमार कर देगी। वह बस महज कहीं पर भी नहीं खड़ी हो सकती है जो दूषित हो रहा है, सड़ रहा है। वो इस पर नहीं खड़ी हो सकती है, इसलिए वो इसे नहीं खा सकती है। यदि वो इसे खा लेती है, ये पिंडुकी को तुरंत ही मार डालेगा, क्योंकि जो भोजन को पचाता है और उसके पिस से बाहर निकलकर पेट में चला जाता है जो भोजन को पचाता है, और वहाँ पर इस पचाने के लिए कोई भी पित्त नहीं होता है, तब ये पिंडुकी को मार डालेगा। इसलिए आप हमेशा ही देखेंगे पिंडुकी हमेशा ही वहीं पर घूमता रहता है जहाँ पर कुछ तो साफ सुथरा होगा या कुछ तो जो पौष्टिक होगा। अब कौवा इससे भिन्न है। अब केवल ध्यान देना, कौवा जाति एक ढोंगी प्रकार का है। वह कौवा वहाँ पर मरे हुए लोथ पर बैठ सकता है और बस खाता रहता है जितना वह खाना चाहता है, और वहाँ से खेतों में उड़कर जाता है और दाना भी खाता है। लेकिन पिंडुकी दाने को खाकर और उड़कर मरे हुए लोथ को नहीं खा सकती है। इसलिए एक ढोंगी, एक मनुष्य एक ढोंगी हो सकता है और दोनों खाता है, आत्मिक चीजों को भी और अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को भी खाता है। लेकिन एक सच्चा जन्म पाया हुआ मसीह इन बातों को सहन नहीं कर सकता है जो गलत है, और केवल अच्छी चीजों को ही खा सकता है। इसे ध्यान देना। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो नाचने के लिए जा सकता है और बाहर जाकर शराब पीना और पाप में जी सकता है, और वापस आकर कलीसिया में ऐसे जोर से चिल्लाता है जैसे वो एक संत हो, यह क्या है? वह एक कचरा ढूंढने वाला है। वह दोनों खा सकता है, सड़ी हुई चीजों को और अच्छी चीजों को, लेकिन वास्तविक मसीह उन चीजों को और सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मृत्यु से जीवन की ओर पार हो चुका है। और ये तुरंत ही उसे दोष देंगे, इसके वही विचार ये इसे तब तक दोष देते रहेंगे जब तक वो अपने मुंह को मोड़कर और वहाँ से चला नहीं जाता। ओह, क्या ही एक तस्वीर है। अब वो मेमना बहुत ही छोटा सा सुशील जीव है, वह नहीं करता है, वह खुद की सहायता नहीं कर सकता है, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है क्योंकि वह खुद की सहायता नहीं कर सकता है। कुछ समय पहले मैं यहाँ चारागाह से होकर गुजर रहा था, जैसे मैं हमेशा ही यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ, और मैंने एक छोटे से मेमने को देखा, और उनमें से बाकी के सारे मेमने पता नहीं कैसे उससे दूर चले गए थे, और वह एक छोटे से कांटों की तार के गुच्छे में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, और वह बेचारा छोटा सा जीव वहाँ पर लहूलुहान पड़ा हुआ था और मिमिया रहा था। और मैं वहाँ पर गया और वहाँ से कुछ दूर देखा, लगभग आधा मील की दूरी पर वहाँ एक पूरा भेड़ों का झुंड था। अब वह ठीक वहीं पर पड़ा रहता था, और बहुत ही जल्द कौवे उसकी आंखों को नोच लेते थे यदि मैं वहाँ पर उसे बाहर नहीं निकालता था तो। लेकिन मैंने उस छोटे से मेमने को छुड़ाकर और उसे मेरे हाथों पर उठाया। उसने कभी भी इंकार नहीं किया, वह बहुत ही शांत बैठा हुआ था। मैंने उसे अपने हाथों में लिया, शायद पहली बार किसी मनुष्य जाति ने कभी अपने हाथों को उस पर रखा था, लेकिन वह बहुत ही सुशील था। वह चाह रहा था कि कोई उसकी अगुवाई करे, वह चाह रहा था कि कोई उसकी सहायता करे, और मैं आशा करता हूँ आप इसे समझेंगे। वह इच्छुक नहीं था कि छुड़ाने का यत्न करे और लात मारे और आपको काटे। मेमना आपको वापस लात नहीं मारेगा, वे कभी भी नहीं काटते हैं, वे अपने आप में बस बहुत ही नम्र होते हैं। एक छोटा सा मेमना, मैंने उसे समेट लिया और बाकी की भेड़ों के बीच में उसे वापस छोड़ दिया। कुछ ही मिनटों पर उसकी माँ ने उसे ढूंढ लिया, वह बहुत ही खुश था। अब ये परमेश्वर के मेमने का क्या ही प्रतिरूप है। आप जानते हैं एक भेड़ को कहाँ पर मारा जाता है? आप जानते हैं उसे मारने के कमरे की ओर ले जाने में उसकी कौन अगुवाई करता है? एक बकरा करता है। लेकिन वह बकरा उस मेमने को सीधा उस कसाई खाने की ढलान की ओर लेकर जाता है, और फिर जैसे ही वह भेड़ वहाँ पर ढलान पर आने लगती है तब वो वहाँ से बाहर कूद जाता है। लेकिन ओह, वे कहते हैं जब वे बकरे को मारते हैं वह बहुत ही शोर मचाता है, समझे? और इसी तरह से शैतान करेगा, वो परमेश्वर के बच्चों को वहाँ से सीधा सबसे गंदे स्थानों पर अगुवाई करने का यत्न करेगा, लेकिन जब उसके मरने का समय आता है तब वह पूरी तरह से बहुत ही शोर मचाता है। इसी तरह से शैतान इसे करता है, और इसी तरह से कभी कभी कुछ और छोटी सी सुंदर सी दिखने वाली लड़कियां, कुछ छोटे से आवारा लड़के हाथ में सिगरेट का पैकेट लिए हुए या विस्की की बोतल लिए हुए छोटी लड़की को बाहर की ओर अगुवाई करते हैं, जो किसी झुंड का एक मेमना होगा, गलत चीजों की ओर लेकर जाएगा। ओह, यह ऐसे ही है, यह कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही कलीसिया के विषय में बेकार की बातें हैं। लेकिन एक बार मृत्यु को उस छोटे से लड़के पर आने दो, उसे आप चीखते चिल्लाते हुए सारे देश भर में सुनेंगे। और इसी तरह से शैतान ऐसा करता है। लेकिन एक मेमना बहुत ही सुशील होता है कि उसकी अगुवाई की जा सकती है, और इसी कारण से परमेश्वर ने मसीह को एक मेमने की नाई प्रतिनिधित्व किया और खुद को पेंडुकी की नाई। और उस दिन पर जब यूहन्ना ने यरदन नदी पर यीशु को बपतिस्मा दिया, जो सबसे महान घटनाओं में से एक है जो वहाँ पर कभी घटित हुई थी, वहाँ पर इस बात ने जगह ली थी। ध्यान देना, ये कितना सुंदर है, वह मेमना जो धरती की सारी सृष्टि में से सबसे नम्र है, और वो पेंडुकी जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी में सबसे नम्र है। अब यही वो केवल एक तरीका है कि वे हमेशा ही एक साथ आ सकते हैं। केवल यही वो तरीका है, वह पेंडुकी हमेशा मेमने पर आएगा। अब जब वो पेंडुकी नीचे उतर कर आया, यूहन्ना ने यीशु को देखा और उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को दूर लेकर जाता है। और यूहन्ना ने कहा, मैं इसकी गवाही देता हूँ, परमेश्वर के आत्मा को मैंने एक पेंडुकी की नाई नीचे उतरते देखता हूँ और उस पर बना रहता है। हालेलुया, आप वहीं पर हैं। वह पेंडुकी और मेमना दोनों एक साथ एक हुए थे। यही है जब परमेश्वर और मनुष्य एक बन जाते हैं। यही है जब धरती और आकाश आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। हालेलुया, यही है जब परमेश्वर देहधारी हुआ था, इसे लेकर आया। यही है जब परमेश्वर आत्मा के रूप से नीचे उतर कर आया और एक मनुष्य बना था और हमारे बीच में रहा। यही है जब सारी अनंतता आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। यही है वो जब आदम के लोग मनुष्य की गिरी जाति और यहोवा परमेश्वर और हरेक दूत एक साथ आते हैं। जब परमेश्वर और मनुष्य एक बन गए थे उस महान यादगार दिन पर, जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। अब क्या होता यदि वहाँ पर एक भेड़िया होता था? उस पेंडुकी की मधुर गुटरगू की आवाज कभी भी भेड़िए के पास नहीं रुक सकती है। इससे और अधिक क्या मधुर होगा देर शाम के समय उन छोटे जंगली कबूतरों की आवाज को सुनना, वहाँ पर बैठे हुए जब गुटरगू करते हैं। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को खोने के बाद मैंने किसी एक को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा था। मैं हमेशा ही मेरी पुरानी कार को लेता और वहाँ से उस रास्ते पर गाड़ी को चलाकर यहाँ बाहर वॉलनट रिज के कब्रिस्तान पर जाता, वहाँ पास ही पेड़ के किनारे बैठकर और उस कब्र को देखता रहता। मैं बस उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। ऐसा दिखाई दिया मैं और ज्यादा नहीं खड़ा हो पाऊंगा। मैं सोचता मेरी छोटी सी बच्ची वहाँ पर पड़ी हुई है, 8 महीने की बच्ची, किस तरह से वो हमेशा ही अपने छोटे हाथों को पकड़े हुए होती और मुझ तक पहुँचती, और मैं आवाज को करता और उससे कुछ कहता और वह गूं गूं करके अपने छोटे से हाथों को वहाँ तक पहुँचाती थी। और मैं नीचे बैठ जाता उस पेड़ के पास में, विशेष करके जब शाम का समय होता था, और वहाँ एक छोटा सा पेंडू की झाड़ियों में आकर हमेशा बैठा रहता, वह गुटरगू की आवाज को करता रहता। ओह प्रभु, मैंने एक बार सोचा यदि मेरी बच्ची का वह अमरहार प्राण वापस आकर मुझसे बात करने की कोशिश करे। उस पेंडुकी की गुटरगू की आवाज से कोई और मधुर आवाज नहीं हो सकती है। ये कैसी प्रिय है, वो संदेश को लाती है, किस तरह वह शांति को लाने का यत्न करती है। सुबह भोर को उठकर और घने जंगल में जाकर वहाँ नजदीक ही जहाँ मैं जाता रहता हूँ, इसे सुनना क्या ही एक शांति पूर्व बात है। ठीक वहाँ उस ऊंचे लंबे पेड़ पर बैठी रहती और वे एक दूसरे से पेंडुकी की गुटरगू आवाज करते। और एक दिन वहाँ बाई कोस के यहाँ एक छोटी माँ पेंडुकी के 2 छोटे बच्चे थे, और वे ठीक इमारत के सबसे ऊपर बैठे हुए थे जिससे कि वो बिल्ली उन्हें न पकड़ पाए। और वहाँ पर छोटी माँ पेंडुकी उन्हें भोजन खिलाती थी, तब वह नीचे आकर और उन्हें ले लेती थी और उसे पेड़ में ले जाती और वहाँ पर बैठकर इस तरह से अपने गले को यहाँ वहाँ एक दूसरे की ओर घुमाते और दिन भर गुटरगू करते और प्रेम करते 2 छोटे सुशील पेंडुकी के बच्चे। और मैंने सोचा कैसे परमेश्वर वो पेंडुकी बहुत ही एक प्रेमी पक्षी है और वह पेंडू की परमेश्वर उसके मनुष्य जाति के साथ उसके प्रेम को करना चाह रहा है। परमेश्वर प्रेम को करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश न हो लेकिन उसके पास अनंत काल का जीवन हो। प्रभु धन्य हो। तब परमेश्वर प्रेम को करना चाहता था, उसके पास कुछ तो था, कुछ तो प्रेम को बनाना था, उसे कुछ तो सुशील बनाना था जैसा वो खुद था, उसे ऐसा कुछ तो बनाना था जिससे प्रेम किया जा सके, उसे कुछ तो बनाना था जो उसका खुद का स्वभाव हो। आप किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते जो आपके खुद के स्वभाव का नहीं हो। प्रेमी को प्रेम के साथ एक होना है। एक पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करना है, यदि वे हमेशा ही श्रेणी को बनाते हैं। परिवार को एक दूसरे से प्रेम करना है, यदि वे हमेशा श्रेणी को बनाते हैं। किसी को तो प्रेमी बनना है। आप एक लड़की को पाने के लिए हर कहीं ढूंढते हैं कि वो आपकी पत्नी बने जिससे आप प्रेम करें। वह एक पति को पाने के लिए ढूंढती है जिससे वो प्रेम करे। परमेश्वर ढूंढता है, एक प्राण को पाने की कोशिश करेगा जिससे वह प्रेम कर सकता है। इसलिए उसने यहाँ इस धरती पर खुद का प्रतिनिधित्व एक पिंडू की किनाई किया और एक सुशील मेमना। यदि वह मेमना एक मिनट के लिए भी उस गुर्रीले भेड़िए के स्वभाव को ले लेता है तब वो पेंडू की तुरंत ही वहाँ से उड़ जाएगा, वह वहाँ से दूर चला जाएगा। लेकिन वह मेमना, उसके पास इसका अपना कुछ दिमाग नहीं होता है। मेमना एक ऐसी चीज है, जब वह खो जाता है वह हताशा पूर्वक खो जाता है। एक भेड़ कभी भी अपने वापसी के मार्ग को नहीं ढूंढ सकता है, इसी कारण से वह बकरा उसे उसकी मृत्यु की ओर अगुवाई करता है। एक भेड़ जो खो चुका है वह उसके मार्ग को नहीं ढूंढ सकता है, इसी कारण से परमेश्वर हमें भेड़ के समान चाहता है। हम जब खो जाते हैं, हम खो गए हैं, हमारे लिए कोई जरिया नहीं है जिससे कि हम अपने आप को पा सकें। और केवल इसे करने के लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि हम खुद को उस झुंड के चरवाहे को सौंप दें और वह हमारी अगुवाई को करता है। अब जैसे हमने देखा है मेमना और भेड़ को एक साथ, मेरा मतलब मेमना और पेंडुकी को एक साथ एक बनते हैं, फिर देखना कैसे पेंडुकी मेमने की अगुवाई करता है। वो परमेश्वर का पुत्र, वो कितना सुशील था यह जानते हुए कि उसका वध होने जा रहा था। वो कितना सुशील था, कभी भी उसने खुद से करने की कोशिश नहीं की, आत्मनिर्भर होने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ जब तक पिता मुझे पहले नहीं दिखाता और पिता मुझ में रहता है। अब मेमने की एक और बात है, मेमना उसके अधिकारों को सौंपने की इच्छा रखता है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम मेमना बने, लेकिन वहाँ पर बहुत सी बार हम अपने अधिकारों को नहीं सौंपना चाहते, हमारे अधिकारों को खोना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोग कहते हैं, तो ठीक है मेरे पास अधिकार है भाई ब्रैनम, यह सही है, लेकिन क्या आप अपने अधिकारों को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने अधिकारों को देने की इच्छा रखते हैं जिससे परमेश्वर आपको चला सके? यही मामला आज की हमारी कलीसिया के साथ है, बहुत बड़ी संख्या में, कि वह परमेश्वर के मेमने की सुशीलता, हमें मेमना बनना चाहिए। हम मेमने को छोड़ कुछ भी नहीं बन सकते हैं, और यही वो कारण है, जैसे ही हम उस व्यवहार को करते हैं पवित्र आत्मा का पेंडुकी वहाँ से उड़ जाता है और छोड़ देता है। यदि परमेश्वर का मेमना एक भेड़िए की तरह पहले गुर्राने लगता है और कुछ भी उसके विपरीत जिसे सुशील पेंडुकी ने करने की उसे अनुमति दी है, वह पेंडुकी उसकी उड़ान को भर देगी, वह एक ही मिनट में छोड़कर चली जाएगी। और यही आज वो कारण है जिसे हम सोचते हैं कि आज पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ क्या मामला है। यह इसीलिए है कि हमने इस भिन्न स्वभाव को ले लिया है, हमने उस स्वभाव को ले लिया है। हमें हमारे अधिकार चाहिए, हम वो करने जा रहे हैं जो हम जानते हैं जिसे हमें करने का अधिकार है, और हम एक अहंकारी बन जाते हैं, हम विरोधी बन जाते हैं, हम विभिन्न बन जाते हैं, हम गुस्से को आने देते हैं, हम स्वार्थ को आने देते हैं। एक मेमना जब समय आता है वो उसके ऊन का मालिक होता है, जो उसका अधिकार है वो उसके ऊन का मालिक होता है, लेकिन उस मेमने को लेकर और उस खाचे में डाल देते हैं और उसके पांव को नीचे से बांध देते हैं, वह कभी भी लात को नहीं मारेगा, वह कभी बहस नहीं करेगा। आप बस उसके अधिकारों को उसमें से निकाल देते हैं क्योंकि वह एक मेमना है। वह कभी भी कुछ और नहीं कर सकता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है। लेकिन एक बार उस मसीह की राह को छोड़ देते हैं, आप पाएंगे कि वह मेमना है या बकरा है। आप पाएंगे कि वो क्या है, उसे एक बार परख कर देखो। और यही आज वो कारण है हमारी कलीसिया और उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। हम अपने आप को परमेश्वर का मेमना कहकर बुलाते हैं और स्त्रियाँ और पुरुष मिलकर परमेश्वर के मेमने को छोड़ हर एक तरह के आचरण को करते हैं। आप उन्हें रास्तों पर जाते हुए देख सकते हैं और छोटे कपड़े पहने हुए, बालों को कटाए, उनके सारे बालों को घुंघरालू करते हैं। और कुछ वर्ष पहले आप बुलाते, आप ऐसा करने के लिए उन्हें भाड़े पर नहीं ले सकते। और तब आप सोचते होंगे कि वो कलीसिया इस तरह की परिस्थिति में क्यों है। यह इसीलिए है आपने उस विनम्र सुशील स्वभाव को लेने की बजाय एक भेड़िए या बकरे के स्वभाव को ले लिया है। आप कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ यह आपका सौभाग्य है। नाई बालों को काटता है और जब तक नाई आपके बालों को काटे तब तक क्या मेरे पास एक अधिकार नहीं है? यह सही है, यह आपका अमेरिकन सौभाग्य है। लेकिन क्या आप एक मेमना बनने के लिए इसे छोड़ने की इच्छा रखते हैं? क्या आप अपने आप को समर्पित करने की इच्छा रखते हैं? और आप महिलाएं, ज्यादा समय नहीं हुआ आप रास्ते पर जाती हैं, यह देखकर बहुत ही बेहुदा सा लगता है जिस तरह से आप वे महिलाएं कपड़ा पहनती हैं। और मैं प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस होलीनेस महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। आप रास्ते पर चलती हैं और मैंने मेरे कार पर मेरे सामने की तरफ एक छोटे से क्रूस को लटकाए रखा है और किसी ने मुझसे कहा, आप जानते हैं यह एक कैथोलिक का चिन्ह है। मैंने कहा, कैथोलिकों को क्रूस पर कब चुनने का अधिकार मिला? कभी नहीं। यह कैथोलिक के विश्वास का चिन्ह नहीं है, यह विश्वासियों के भरोसे का चिन्ह है। ये कैथोलिक का विश्वास तो एक छोटा सा मरा हुआ संत है, मरियम का, या कोई मरे हुए व्यक्ति का जिसकी वे आराधना करते हैं। हम मरे हुए लोगों की आराधना नहीं करते, हम संत सेसिलिया की आराधना नहीं करते। और वे सारे जो विभिन्न संत हैं, यही कैथोलिक मत है जो कि आध्यात्मिकता के ऊपर है। लेकिन क्रूस उसे दर्शाता है जो मरा और फिर से जी उठा है। और मैंने कहा, मैंने रास्तों पर देखते हुए मैंने उस क्रूस को वहाँ पर लटकाए रखा है। 25 वर्ष या 30 वर्ष पहले जब मैं लगभग अंधा था, मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, यदि वो मेरी आंखों को चंगा करता है मैं सही चीजों की ओर देखूंगा। और मैंने कहा, आप हर कहीं देखो यह पूरी तरह से अधार्मिकता दिखाई देती है। महिलाएं अर्धवस्त्र को पहनती हैं और निवस्त्र महिलाएं चौराहों पर होती हैं और हर कहीं रास्तों पर पड़ी रहती हैं। इसे देखने की बजाय मैं क्रूस की ओर देखता रहता हूं और याद करता हूं जो मसीह ने मेरे लिए किया है और मेरे सिर को उस चीज से घुमा लेता हूं जो शैतान से है। हालेलुया। और यह वही लोग हैं, ये न कहें यह प्रेस्बिटेरियन कैथोलिक है, यह पेंटिकॉस्टल है। आमीन। आप कहते हैं मेरे पास इसका एक अधिकार है भाई ब्रैनम, यह ठीक बात है। लेकिन यदि आप एक मेमने थे, आप अपने सारे अधिकारों को छोड़ देंगे। और यदि आप इस तरह से व्यवहार को करते हैं, पवित्र आत्मा वो सुशील पेंडू की ठीक वहाँ से अपनी उड़ान को भर देगी, वो आपके साथ कलंकित नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, आप कभी नहीं सोचें कि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और आपके पास पवित्र आत्मा है, आप इसे नहीं कर सकते हैं। बाइबल ऐसा कहता है, आपको अपनी उन चीजों को छोड़ना है। तो ठीक है, आप कहते हैं बाकी की स्त्रियां ऐसे कर रही हैं और आप पुरुष लोग जो बेचारे छोटे बिना हड्डी के कायरता की बातों को करते हैं, आप अपनी पत्नी को इस तरह की कुछ चीजों को करने देते हैं, यह दिखाता है आप किस चीज के बने हुए हैं। यही वो कारण है आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता जिसे आप होने का दावा करते हैं। या तो आप उस विषय में बहुत कुछ करते जिससे कि आप उसे एक महिला की तरह व्यवहार करने को लगाए जब तक वो आपके साथ रहती है। कुछ भी हो, आमीन। यह पुराने ढंग के फैशन को दिखाता है बालों को काटना, लेकिन यही है जो आज कलीसिया की आवश्यकता है कि पुराने ढंग के फैशन को करें। पवित्र आत्मा आपको धो देता है बाहर लटकाकर और सुखाता है और आप पर स्त्री करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। निश्चय ही, और क्या ही परिस्थिति के अंदर आज दुनिया चली गई है और किस तरह से वे रास्ते पर आकर और इन चीजों को करते रहते हैं। कैसे आप अपने सिर को बुधवार की रात को टेलीविजन पर चिपकाए रखते हैं और कलीसिया नहीं जाते हैं, कैसे आप? क्योंकि लेकिन देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो डेविड क्रॉकरेट के बारे में सब नहीं जानता हो। और वह बेहुदा झूठ जिसे वो बोल रहा है कि उसने 3 वर्ष की आयु में एक भालू को मारा, आप जानते हैं कि यह झूठ है, लेकिन आप अपने बच्चों को उसे देखने की अनुमति देते हैं। और वहाँ पर 100 में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कभी यीशु मसीह के बारे में कुछ भी जानता होगा। यह इसलिए है क्योंकि यह संसार पूरी तरह से भ्रष्ट बन चुका है। यह राष्ट्र पूरी तरह से बद्दा हो चुका है और परमेश्वर से दूर चला गया है, पवित्र आत्मा को ठुकरा दिया है। ओह, आप कहते हैं मैं कलीसिया जाता हूँ और चिल्लाता हूँ, आप शायद ये करते होंगे, लेकिन जब तक वह सुशील परमेश्वर का मेमना आपके हृदय में बस नहीं जाता और आपके जीवन को साफ नहीं करता और आपको एक भिन्न व्यक्ति के जैसे कार्य करने को नहीं लगाता, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा कि आप एक मसीहत का ढोंग करें। आपके पास इसे होना है। आमीन। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए एक घर के अंदर गया और एक महिला जो वहाँ पर थी वहाँ बैठी हुई थी और एक छोटा सा ओसवाल्ड मस्तीखोर लड़का अंदर आया, उसके सिर पर तिरछी टोपी रखी हुई थी और कहा, मामा क्या आज रात का खाना तैयार है? उसने कहा, प्रिय हमें समय नहीं मिला। कहा, क्या आज सुबह रात्रि का भोजन मिलेगा? कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। कहा, वहाँ पर कुछ नारंगियाँ रखी हुई हैं। वो वहाँ पर चलकर गया और एक नारंगी को लिया, उसकी ओर देखा और उसे चबाया और दीवार पर इतनी जोर से मारा जितनी जोर से वो मार सकता है और नारंगी का रस नीचे गिरने लगा। कहा, यदि तुम्हें यहाँ पर यही चीजें मिलती हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरह से मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, ये मेरा 5 मिनट के लिए बेटा होना चाहिए था। लड़के जो उसने छिपा है मैं उसमें से निकाल देता जैसे उसे पता भी नहीं चलता कि ये निकल गया है, लेकिन वे उसे स्नेह और लाड देते हैं। उसे एक अच्छी तरह पुराने चलन की खाल को खींचने की आवश्यकता है। यही है जिसकी हमें आवश्यकता है, वही पुराने चलन के घरों की और कुछ प्रचारकों की जो पुलपिट के पीछे खड़े होकर और सच्चाई को प्रचार करें और वे इसे रखें जहां पर उन्हें रखना चाहिए। आमीन। यह सही बात है, यह सच्चाई है। ओह प्रभु, छोटी मरियम अपने छोटे पांव को पटकती और अपने छोटे नाक को ऊपर चढ़ाती और अपने उन होठों को कुछ गुलाबी रंग का करती है जो मैक्स फैक्टर की चीजों से लीपापोती करती है, तानकर और अपने छोटे से सिर को ऊपर करके घर के बाहर निकल जाती है। क्या ही शर्म की बात है, किस तरह से बच्चे हट्टी हो गए हैं। बाइबल ने कहा कि वे होंगे, वचन कहता है वे ऐसे होंगे। वे किस तरह से व्यवहार करेंगे, वह कैसे करेंगे, और आज यही बातें संसार में घटित हो रही हैं क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। कुछ वर्ष पहले, अब कुछ दिनों में मैं जा रहा हूँ जहाँ पहली बार अमेरिका में पवित्र आत्मा उतरा था, उसकी सालगिरह मनाने, जो 50 वर्ष पहले उस वर्ष उस पुराने अजूजा स्ट्रीट पेंटिकॉस्टल सभा जो लॉस एंजलिस में हुई थी, जहाँ पर उनका पवित्र आत्मा का उंधेला जाना हुआ था, जब वे लोग इकट्ठा हुए थे, जब मसीह उन लोगों के बीच में उतर कर आ गया, वे बस केवल वैसे ही सुशील, वैसे ही शांति पूर्वक थे। उन्होंने भक्ति पूर्व जीवन को जिया, उन्होंने बलिदान से भरे हुए जीवन को जिया। वे देने की चाह रखते थे, वह चाह रखते थे कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें। उन्होंने परवाह नहीं की कि लोगों ने क्या कहा कि वे पुराने चलन के लोग थे, चाहे उन्हें पागल कहा गया हो या उसके बारे में जो भी कहें, वे पवित्र आत्मा के चलाए चलने की इच्छा रखते थे। लेकिन आज, ओ प्रभु, पाउडर को लगाए हुए और मेकअप बॉक्स, सजने संवरने के डब्बे को लेकर और एक जोड़ी छोटे कपड़े की लेकर और रास्तों पर निकलती हैं, क्यों? यह एक शर्मनाक बात है और अपने आप को वे पवित्र आत्मा से भरे हुए कहते हैं। ओह, आप कहते हैं लेकिन मैंने अन्य भाषा में बात की। जी हाँ, शैतान भी ऐसा करता है। ओह, मैंने चिल्लाया और शैतान भी ऐसा करता है। शैतान परमेश्वर की हर एक चीज की नकल कर सकता है केवल प्रेम को छोड़कर, और वह प्रेम की नकल नहीं कर सकता है। जी हाँ, तब पहली चीज जो आप जानते हैं, जब आप उन चीजों को करते हैं, आप शराब के अड्डों पर जाते हैं और उनसे समझौता करने लगते हैं, तब कलीसिया में कुड़कुड़ शुरू हो जाती है, उनके बीच में गुट बनने लगते हैं और ये कहता है, आप जानते हैं पास्टर का अभी ऐसा ऐसा हुआ या डीकन का अभी ऐसा ऐसा हुआ, और पहली बात आप जानते हैं कि आप उन बातों को सुनते हैं और इसी कारण से हम बहुत ही अधिक गड़बड़ी में आ जाते हैं, क्योंकि आप शैतान को सुनना आरंभ करते हैं और गुर्राने को लेते हैं बजाय उस सुशील पेंडुकी के सुनने के जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की पेंडुकी जो आपको अगुवाई करेगा और नेतृत्व करेगा, आपसे प्रेम करेगा और आपको आशीष देगा। पहली बार जब आपको वो छोटा सा एक गुस्से का दौरा पड़ता है, वो पेंडुकी वहाँ से उड़कर चली जाती है। यह सही बात है, वह इस पर खड़ी नहीं हो सकती है, उसका स्वभाव भिन्न है। ओह, वो वहाँ पर खड़ी भी नहीं हो सकती है। और आप अपने पड़ोसी के बारे में बातें करते हैं, वह इस पर नहीं खड़ी होगी, वह उसके साथ नहीं बनी रहती है, वह तुरंत वहाँ से उड़ान को भरता है और वहाँ से दूर चला जाता है, वह उसके साथ और नहीं बने रह सकता। पेंडू की सुशील है, पेंडू की विनर्म है, और वो पेंडू की और ये कहीं पर भी नहीं खड़ी हो सकती है जब तक ये उसके स्वभाव के जैसा नहीं हो। अब परमेश्वर आपको एक भिन्न स्वभाव को बना सकता है, पुरुष और महिला, वो आपको एक भिन्न स्वभाव को दे सकता है और आप कहते हैं तो ठीक है भाई ब्रैनम, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आपको केवल फिर से एक मेमना बनना है। यही केवल वे दो जानवर हैं जो हमेशा एक साथ एकत्र होते हैं, वह है पेंडुकी और मेमना। वो पेंडुकी किसी और चीज पर नहीं आएगा सिवाय एक मेमने के। और यदि आप एक बकरा बनते हैं तब आप अपने में से उस पुराने बकरे के आत्मा को दूर कर दें। यह सही बात है। यदि आप कुछ और ही बन जाते हैं आप उन्हें अपने से दूर कर दें। यदि आप एक बकबक करने वाले के पास आते हैं, यहाँ एक समय पहले मैंने किसी एक शहर में बहुत ही कड़क प्रचार किया जितना मैं कर सकता हूँ, और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे। मैंने एक वेदी की बुलावट को किया। मैंने सोचा मैंने सारे क्षेत्र के पाप को बता दिया है। मैंने हर एक चीज को बताया जो मैं सोच सकता था। उस रात को सभा खत्म होने के बाद छोटी सी नक्चड़ी महिला वहाँ पर चलकर आई। उसने कहा तो भाई ब्रैनम, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने आज रात को मेरा उल्लेख नहीं किया। मैंने सोचा यह निश्चय ही एक सच्ची मसीह है। कहा आपने आज रात को मेरा उल्लेख नहीं किया। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं निश्चय ये सुनकर बहुत ही खुश हूँ महिला, आप अवश्य ही परमेश्वर के राज्य के नजदीक होंगी। और वह वहाँ से पलट कर चली गई। कोई बुजुर्ग महिला वहाँ पर खड़ी थी। मैंने कहा क्या आप उस महिला को जानती हैं? जी हाँ, मैंने कहा वह निश्चय ही एक वास्तविक मसीही होगी। कहा एक चीज आज रात बताने से आप चूक गए भाई ब्रैनम, जो बकवास बातें करना था वह इस देश की सबसे मुख्य बकवास बातें करने वाली महिला है। देखो आप वहीं पर हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब आप उन बातों में से किसी एक पर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे प्रचारक इस बात को पुलपिट में से इन बातों को बताए या न बताए, जब आप संसार की उन शारीरिक बातों को देखते हैं, जब तक आप उनके साथ असहनशील होते हैं आप परमेश्वर से दूर होते हैं और पवित्र आत्मा आपसे दूर चला जाता है। इसी कारण से ये सभाएं वैसे नहीं रही जैसे ये हुआ करती थी। इसी कारण से आज सुबह भवन में तंबू की सभाएं जन्म को नहीं लाती हैं। इसी कारण से बड़े तंबू की सभाएं देश में कहीं भी नहीं होती हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के सुशील पेंडुकी को शोकित किया है। यह सही बात है। वो हमारे साथ ज्यादा देर तक नहीं बने रहता है जब हम बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जब तक हम पीठ पीछे बातें करते हैं हम अपने रास्तों को चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, वह मेमना एक शांत मेमना था। बाइबल ने कहा उसने अपने मुंह को न खोला, जैसे एक भेड़ ऊन काटने वाले के समान होती है वह मौन था। उसने अपना मुंह न खोला। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके अधिकारों को चाहता हो। नहीं श्रीमान, वह उसके अधिकार को देने का इच्छुक था। वो एक शांत मेमना था। लेकिन आज ओह हम अपनी किस तरह की भिन्नता को चाहते हैं। ओह प्रभु मैं आपको बताता हूँ, आप बस कहते हैं कोई तो मुझे कुछ तो कहने दो, मैं वहाँ जाकर उसे देख लूँगा, भाई मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। मैं उस पुरानी ढोंगी को बताऊंगा जब मैं उस महिला को देखूंगा, आप बस रुके रहना जब तक मैं उसे देख नहीं लेता। परमेश्वर धन्य है, हालेलुया। वह पेंडुकी उसकी उड़ान को ले लेता है और दूर चला जाता है। यह सही बात है। पवित्र आत्मा आपके साथ अब और अधिक नहीं रहता है जब तक आप इस तरह से महसूस करते हैं। इस बात को किताब में लिख लेना, यह इसे नहीं करेगा। पवित्र आत्मा वहाँ नहीं बना रहेगा जहाँ पर इस तरह का आत्मा होता है। इसे तो एक मेमने का आत्मा होना है, एक सुशील आत्मा, या उसके साथ नहीं बना रहेगा। इसके साथ ऐसा ही होना है। यदि यह एक सुशील विनर्म नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलता है, और यदि वहाँ पर कुछ भी बात ऊपर आती है यह बस उसे ध्यान भी नहीं देता है, वह केवल आगे बढ़ता रहता है, समझे। और उसी मिनट पर यह एक तरफ हट जाता है, आप जानते हैं, बिल्कुल उसी, जब आप एक तरफ हट जाते हैं, आप जानते हैं पहला पाप एक व्यक्ति के केवल एक मिनट दूर रहने की वजह से आरंभ हुआ। क्या आपको ये पता है, बाइबल ने ऐसा कहा, हवा एक मिनट के लिए वहाँ से हट गई, शैतान को जो कहना था उस बात को सुनने के लिए, और उसने एक तस्वीर को चित्रित किया जो हवा को बहुत ही आकर्षक लगी, इतना तक कि उसने सोचा कि यह सच्चाई है, और उसने उसकी बात को सुना। और केवल यही चीज शैतान चाहता है कि आप करें, केवल एक मिनट के लिए आप बस हट जाएं। वो एक तस्वीर को चित्रित कर सकता है, कहेगा अब यहाँ सुनो, आप जानते हो भाई, आप जानती हो बहन, यदि वे सही तरीके के लोग होते तो वो ऐसा नहीं करते, यदि उन्होंने यह यहाँ सही किया होता, आप जानते हैं। वह इसे इतना वास्तविक बनाता है जब तक ये आपके लिए एक वास्तविक सच्चाई नहीं बन जाती है। यह सही बात है, लेकिन याद रखना यह शैतान है। मैं परवाह नहीं करता कि वे कितने नीचे गिर चुके हैं, वे पाप में कितने दूर तक गिर चुके हैं, यह आपका काम है कि आप उनके कंधों पर हाथों को रखकर और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ऊपर उठाएं। आप कहां पर थे जब परमेश्वर के पिंडुकी ने आपको उस कीचड़ में से ऊपर उठाया? यह आपका काम है मेरे दोस्तों। ये संसार जरा से प्रेम के लिए मर रहा है। वो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस जानवर पर भी ध्यान दें, एक छोटे से जानवर पर। यह एक शांत मेमना था, क्योंकि उसने कभी भी जब उसे गाली दी गई, उसने वापस गाली नहीं दी। वो किसी को बुरा कहकर और आगे नहीं बढ़ा, और वो वाद विवाद करके और दम देकर आगे नहीं बढ़ा। उसने ऐसा नहीं किया। जब किसी ने जब उसे गाली दी गई, उसने उसके मुंह को नहीं खोला। लेकिन किसी को आपको और कुछ तो कहने दो, ओह आप फट जाते हैं जैसे एक दुष्ट मेंढक लोहे की गोलियां को चबा रहा हो, एक बुरे बदक के जैसे फूल जाते हैं। मैं आपको ठीक अभी बता देता हूँ, उसने मेरे पैरों के ऊपर फिर से पैर को रखा है। अब मैं उस पुरानी कलीसिया में फिर से नहीं जाऊँगा। नहीं श्रीमान, प्रभु धन्य है, हालेलुया। वे नाजरीन वाले मुझे स्वीकार करेंगे, वे पिलग्रिम होलीनेस वाले वे मुझे ले लेंगे, हालेलुया। मुझे इसे अब और अधिक नहीं करना है। अच्छी बात है, वो पिंडुकी अपनी उड़ान को ले लेता है। आप जानते हैं क्या, वह पुराना ढोंगी, यदि वो उस कलीसिया में जाएगा, मैं फिर से वहाँ नहीं जाऊँगा। परमेश्वर धन्य है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब यह पुराने भेड़िए की गर्जन आपके पास आती है, पिंडुकी अपनी उड़ान को भर देती है, सही बात है, तब पवित्र आत्मा चला जाता है। तब आप सोचते हैं आपके साथ क्या मामला है, आप सोचते हैं कलीसिया के साथ क्या मामला है, आप सोचते हैं आपके साथ क्या मामला है, आपको क्यों जय नहीं मिल रही है जैसे आपको हमेशा मिलती थी। आपने अपने स्वभाव को बदल दिया है। आप मेमना बनने की बजाय एक बकरा बन गए हैं। मेमना बनने की बजाय आप कुछ तो और ही बन गए हैं। आपको उसके लिए आपको सच्ची आत्मा को लेना होगा। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, जो कुछ भी हो। परमेश्वर, मैं हर एक पापी से प्रेम करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ पर हैं। इस तरह का स्थान मनुष्य के हृदय में होना है, तब आप कुछ तो बात को होते हुए देखेंगे आपके प्राण में। आप कहते हैं तो ठीक है भाई ब्रैनम, क्या इसके लिए कोई उपाय है? जी हाँ, आपको केवल एक मेमना बनना है, ऐसा ही है। आप कहते हैं तो ठीक है भाई ब्रैनम। मैं एक रात शिवरीपोर्ट में एक युवा महिला से मिला। बिली और मैं सभा समाप्त होने के बाद हम सैंडविच लेने के लिए गए। एक सुंदर महिला वहाँ पर आई, शायद वह एक युवा लड़की थी, या हो सकता है 20 वर्ष की या ऐसे ही कुछ। अच्छे कपड़े पहने हुई थी, वहाँ बैठ गई। मैंने ध्यान दिया कि वह उस रास्ते की ओर लगातार देख रही थी। मैंने खाना जारी रखा। कुछ मिनटों के बाद वह महिला अंदर आई। उसने कहा, आप कैसे हैं? मैंने उससे बात की। मैं जानता था कि वह महिला बेन डेविस थी जो वहाँ की थी, और वो और दूसरी महिला जो लाइफ टैबरनेकल से थी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता था। उसने वहाँ आकर और मुझसे बातें की और चले गए। तब वो युवा महिला वहीं पर बैठी हुई थी। उसने कहा, आज रात का बहुत ही अच्छा संदेश था। मैंने कहा, आप कैसी हैं बहन? मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कहा, क्या आप लाइफ टैबरनेकल की सदस्य हैं? उसने कहा, मैं सदस्य हूँ। उसने कहा, आप जानते हैं भाई ब्रैनम, मैं उस झुंड में गा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने वहाँ पर प्रतिबंध को लगाया है। उसने कहा, मैंने बहुत वर्षों से आवाज और इत्यादि का प्रशिक्षण लिया है, और कहा मैं अकेली गा सकती हूँ और विभिन्न तरीके से गा लेती हूँ, कहा लेकिन मैं गा नहीं पाती क्योंकि उन्होंने एक प्रतिबंध को लगाया है कि कोई भी पैंट पहनी हुई महिला झुंड में नहीं गा सकती है। मैंने कहा, अच्छी बात है, लाइव टैबरनेकल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। उसने कहा, तो ठीक है, मैं आपको कहती हूँ भाई ब्रैनम। उसने कहा, मैं एक मसीह हूँ। मैंने कहा, तब बहन घर जाकर और अपने चेहरे को धोना या जो भी आप करती हैं। मैंने कहा, तुम्हारे मुझे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें यह बहुत ही एक छोटी सी बात लगती है, जैसे तुम अपने चेहरे पर कुछ पुराने आभूषणों को पहनती हो, और मैं आपको साबित कर सकता हूँ यह शैतान की ओर से है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ यह कुछ और नहीं, इसकी मुख्य जड़ मूर्ति पूजक से है, और जब तक आप इसे पहनती हैं, यह मूर्ति पूजा की छाप है। अब मैं अभी अभी अफ्रीका से आया हूँ, और मैं होटोटोन के जंगलों में रहा हूँ, और मैंने देखा है कि ये कान के लटकन बिल्कुल वैसे ही हैं जहाँ से ये आए हैं, जहाँ से ये सारे अन्य आभूषण आए हैं, और ये सब बहुत से आभूषण अपने गले में डाले हुए, गले पर, कानों पर, हर एक चीज जहाँ से ये आए हैं, ये मूर्ति पूजा है। और बाइबल नहीं चाहता है कि एक मसीही एक मूर्ति पूजक होना चाहिए, और आप नहीं चाहती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप एक मूर्ति पूजक हैं, क्योंकि आप ऐसा करती हैं, लेकिन आप अपने आप को उनमें से एक की तरह बनाती हैं। यह इसीलिए है क्योंकि आपके पास्टर ने आपको सच्चाई को नहीं बताया है, बाइबल ऐसा कहता है। और अब आप कहती हैं, मैं सोचती हूँ यदि मैं अपने बालों को छोटा करती हूँ, इससे मुझे ठंडक लगती है, और इत्यादि बातें अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके पास लंबे बाल हैं तो भी ठंडक होगी। सारे बालों को आप कंधे पर उठाकर और ऊपर की तरफ सही तरह से बांध लें और अच्छी तरह से सवार लें। क्यों? आप जानते हैं बाइबल ने क्या कहा कि एक मनुष्य के पास अधिकार है कि अपनी पत्नी को दूर रखे और उससे तलाक ले ले। यदि स्त्री अपने बाल को कटवाती है, यदि वो कटवाती है तो यह दिखाता है वो उसके साथ सच्चा जीवन नहीं जी रही है। बाइबल ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों 12 में आप देखें, ये बात सही नहीं है। तो वो एक महिला जो अपने बालों को काटती है वो अपने सिर का अपमान करती है जो उसका पति है, और यदि वो अपमान करती है तो उसे तलाक दे देना चाहिए और उससे दूर होना चाहिए। यह सही बात है, लेकिन देखो वो पास्टर कभी भी आपको उन चीजों को नहीं बताएगा, और यही वो कारण है आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं करते हैं। और वो पुरुष, बाइबल ने कहा, ज्यादा समय नहीं हुआ किसी ने कुछ तो लिखा था और कहा, भाई ब्रैनम वे कुर्तियाँ जो महिलाएं पहनती हैं, कहा क्योंकि इस तरह की कुर्तियाँ मुश्किल से ही मिलेंगी, और क्या हम मसीह महिलाओं के लिए पॉलिएस्टर का कपड़ा, नायलॉन या जो कुछ भी इस तरह का है ये पहनना ठीक होगा? मैंने कहा, देखो बहन, इस विषय पर एक बात है, यहाँ पर एक चीज सच्ची है, आप ये कर सकती हैं। यदि आप नहीं खरीद सकती हैं तो वे सिलाई की मशीनों को बेचते हैं, आप उसे बना सकती हैं। मैंने कहा, यह सही है, आप इसे वैसे ही बनाएं। मैं सोचता हूँ आप जानते हैं आपके हृदय में जो होता है वो अपने आप में व्यक्त करता है। जिस तरह से आप चाहते हैं आप उस तरह का व्यवहार करते हैं, यह दिखाता है कि आप में क्या है। इसी कारण से यहाँ पर यह सब विवाद और बहस होती है और पीठ पीछे बातें करना और पीछे से चुगली करना होता है, और कलीसिया में यह बढ़ता जाता है। इसी कारण से कलीसियाएं टूटने लगती हैं। यह दिखाता है शैतान आपके अंदर चला गया है, और यह दिखाता है पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया है। अब मैं जानता हूँ यही है जो अभी आप में से कुछ लोगों में से राल को जलाकर निकाल रहा है, लेकिन इसे इसी तरह से करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी कारण से इसे कहा गया है चालाक बनने के लिए नहीं, न ही भोला सा व्यवहार करने के लिए, लेकिन आपको बताने के लिए कि गड़बड़ी कहाँ पर है, क्योंकि किसी दिन मुझे वहाँ पर खड़ा रहना होगा और आपके लिए जवाब देना होगा। और यही वो कारण है आप ऐसा करते हैं, आप उस तरह से व्यवहार करते हैं, यह दिखाता है कि आप क्या है। यदि आप पुराने गर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों में आप इससे बाहर हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं और वैसा ही करते जाते हैं या निंदा करते हैं, अश्लीलता, इसी तरह की भिन्न बातें, यह दिखाता है कि यह कहाँ से आ रही हैं। अब वहाँ पर करने के लिए एक ही चीज है, वहाँ से उन चीजों को बाहर कर दो और वो पेंडुकी आपके हृदय में वापस आ जाएगा। जब वो पेंडुकी जहाज से चली गई, वह मुड़कर चली गई थी, लेकिन वो वापस आ गई और जहाज के दरवाजे पर खटखटाने लगी जब तक नूह ने उसे अंदर नहीं ले लिया। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा अंदर आना चाहता है। यही वो कारण है आज वो पवित्र आत्मा वो आप में से हमेशा के लिए नहीं गया है, यह केवल पेड़ के डालियों में कहीं तो बैठा हुआ होता है। वो स्वयं ही उड़कर वापस आने के लिए तैयार है, आपके अंदर आने के लिए और आपको प्रेम और शांति और आनंद देने के लिए, जैसे आपके पास हमेशा हुआ करता था। निश्चय ही ऐसा है, वो उसे करने के लिए तैयार है, वो उसे करना चाहता है, वो उसे करने के लिए रुका हुआ है, लेकिन आप उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। अब मैं आप अजनबियों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता आपका पास्टर कौन है, मैं ब्रैनम टैबरनेकल से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जो दूसरी कलीसियाओं से हैं, मैं ब्रैनम टैबरनेकल से बात कर रहा हूँ। यही वो समस्या यहाँ पर है, यही है जो पिंडुकी को उसके उड़ान को भरने को लगाती है। बस कोई तो कुछ छोटी सी ऐसी बात कलीसिया में लगभग आरंभ करता है और पहली बात, ओह क्या ऐसा हुआ, ओह क्या तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं है, ठीक तभी पवित्र आत्मा चला जाता है, दूर उड़ जाता है। वह बस उस तरह की आत्मा के साथ नहीं खड़ा हो सकता है जब तक वो मेमने का स्वभाव आप में से छोड़कर नहीं जाता है, तब पवित्र आत्मा चला जाता है। यह सही बात है, और यही आज वो वजह है, यही वो कारण है लोग इस परिस्थिति में हैं, क्योंकि वे अपने हृदय के अंदर उनके जीवन में उस गलत आत्मा को आने देते हैं। अब यही वो कारण है हमारे पास, बाइबल ने कहा यही वो कारण है वहाँ पर बहुत सारे बीमार और पीड़ित लोग हमारे बीच में हैं, क्योंकि इस तरह की बातों की वजह से। हमें अवश्य ही सुशील बनना है, हमें अवश्य ही शांति पूर्व बनना है, हमें अवश्य ही एक मेमना बनना है, इसलिए कि वह पेंडुकी हमारे अंदर बना रहे। अब याद रखना, पेंडुकी आएगा, उसने कहा, ओह भाई ब्रैनम मुझे मत बताओ कि मैंने कभी भी पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, हालेलुया। नीचे रात्रि को वहाँ एक रात्रि, ओह वो अंदर, जब वो अंदर आया तो मैं चल भी नहीं पा रहा था, निश्चय ही ये पवित्र आत्मा था। ओह मैंने बहुत ही अच्छा महसूस किया, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे पेड़ की सारी छोटी चिड़ियाओं को लेकर और उनसे गले मिल सकता और उनसे प्रेम करता। मेरा सबसे जो दुष्ट व्यक्ति है जिसने कभी मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने बाहों को उन पर रखकर और उनसे गले मिल सकता। ओ भाई ब्रैनम, मैंने इस तरह से अनुभव किया, निश्चय ही यह पवित्र आत्मा था। लेकिन आप उस कारण को देखो जिससे वह बना नहीं रह सका। आप एक मेमना थे, लेकिन जब आप एक भेड़िया बन गए, उसे अपनी उड़ान को भरना था। पिंडुक के साथ कुछ भी गलत नहीं था, यह तो आप हैं। आप उस आत्मा को अपने अंदर आने देते हैं। क्या मैंने ऐसा किया भाई ब्रैनम? हाँ, जब आप व्यर्थ बातों को सुनना आरंभ करते हैं, जब आप उस झूठ को सुनते हैं और आप जाकर कहते हैं तो ठीक है, मुझे ये करने का अधिकार है। आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है। आपको एक दाम देकर लाया गया है जो उस परमेश्वर के पुत्र का बहुमूल्य लहू का दाम है। आपके पास कोई वैध अधिकार नहीं है। हालेलुया। केवल आपके पास जो अधिकार है वो ये है कि आप उस लहू से भरे हुए सोते के पास आएं जो इमैनुअल के नसों से बह रहा है। जब पापी उस बहाव के नीचे आते हैं, अपने सारे दोष के धब्बों से साफ हो जाते हैं। जी हाँ श्रीमान, केवल वही अधिकार आपके पास है। परमेश्वर के लिए अपनी खुद की इच्छा को समर्पित करें और परमेश्वर आपको वहाँ से लेकर आगे की ओर अगुवाई करता है। इसी कारण से ये सभाएं होती है। यही वो कारण है कि बहुत सारी असामान्य बातें होती हैं। पवित्र आत्मा एक स्थान पर जाएगा, वो पवित्र आत्मा कहता है यह सही नहीं है, इस सभा को रोको, उधर जाओ भाई, मैं भी इसे रोक कर और सीधे आगे बढ़ जाऊंगा। यह सही बात है, क्योंकि आपको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना होगा। और केवल परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने का एक ही तरीका है कि सुशील बने रहें। आपको बहुत सारी चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं। ओह आप सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जी हाँ, आप अपने दिमाग को बहुत चलाते हैं और यह अपने आप में काम भी नहीं कर सकता है। आप इन सारी किताबों को जानते हैं और सारे जवाबों को जानते हैं और सारे यूनानी और सारे इब्रानी को, और वहाँ पेंडुके के बैठने के लिए कोई स्थान भी नहीं होता है। यह सही बात है, लेकिन आप यह सब जानते हैं तब पेंडुकी अगुवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही जानते हैं। मेमना दावा नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। इसके पास कोई तो और इसकी अगुवाई करने के लिए होना है। महिमा ऐसा ही है, कुछ भी नहीं जानता है। आमीन। केवल एक ही बात है जिसे मैं जानता हूँ, वो है यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए मरा। वहाँ कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति चल रहा था, उसने अपने आगे कुछ तो लिख कर रखा था, मैं मसीह के लिए पागल हूँ, और पीछे की तरफ लिखा था आप किसके लिए पागल हैं? यह सही बात है, संसार के लिए आप एक पागल बनते हैं जिससे कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चल सके, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। रोमियो 8:1 ने कहा, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं जो मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। भेड़िए के पीछे नहीं लेकिन पेंडुके के पीछे चलते हैं। डॉक हमेशा ही एक गीत गाते हैं, मेरे हर एक दिन के मार्ग को प्रेम के साथ भर दे, जैसे मैं स्वर्गीय पेंडुक के साथ चलता हूँ। मैं हर समय इस एक गीत मुस्कुराहट के साथ गाता जाऊँ, मेरे हर एक दिन के मार्ग को प्रेम से भर दे। क्या ही शांतिपूर्ण दिन ब्रैनम टैबरनेकल के लिए होगा, किसी और कलीसिया के लिए या किसी व्यक्तिगत के लिए भी, जब वे उनके अधिकारों को छोड़ देंगे एक मेमना बनने के लिए। सवाल क्या है भाई ब्रैनम? एक मेमना बनने के लिए वापस आए, सुशील बनने के लिए वापस आए, कुछ भी न जानने के लिए वापस आए। वापस आकर बस अपने आप को मसीह के लिए सौंप दें। कोशिश न करें, कुछ भी जानने की कोशिश न करें, केवल नम्रता से चलें, शांतिपूर्वक, दीन, सुशीलता से, और पेंडुकी आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन जब कभी आप देखते हैं उस व्यर्थ पीठ पीछे बात करने वालों को सुनते हैं, जब कभी भी आप गुस्से में आते हैं, जब कभी भी आप यह सोचना आरंभ करते हैं कि मुझे ऐसा करने का और वैसा करने का अधिकार है, पेंडुकी तभी अपनी उड़ान को भरती है और दूर चली जाती है, तब यह आपके पास और नहीं रहता है। अब कलिसिया पेंडुकी आज सुबह आपसे ज्यादा दूर नहीं है, वो ठीक वहाँ डाली पर बैठी हुई है, आपके स्वभाव के बदलने के लिए रुकी हुई है। आमीन। आज आपकी जो आवश्यकता है कि आप अपने सारे अधिकारों को सौंप दें कि परमेश्वर आपको नीचे रखकर और आपके सारे अधिकारों को आप में से मुंडन कर दे। आमीन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे उस एक छोटे से पुराने मेमने के ऊपर वो सारी ऊन लटकती है जो उसके अधिकार हैं? जी हाँ, गर्म करते हैं और फिर वहाँ उसे उस काटने वाले टेबल पर बस लेटा देते हैं। वे जानते हैं कि उसके लिए अच्छा क्या है। उसके सारे अधिकारों को उसमें से निकाल देते हैं और उनको काट कर निकाल देते हैं, तब वो कितना धैर्य और हल्का होकर चलने लगता है। ओह प्रभु, वह खुशी के मारे यहाँ वहाँ कूदने लगता है और उसके पास एक बहुत ही मान समय होता है। जी हाँ श्रीमान, यदि आप अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं तो यही चीज आपको मिलती है, लेकिन आपको आपके अधिकारों को छोड़ना होगा और परमेश्वर के वचन को आप में से सारे संसार का मुंडन करने दे, संसार की सारी आदतों को निकालने दे और आप मसीह में एक नई सृष्टि बनते हैं। यहाँ कुछ समय पहले अफ्रीका में एक बूढ़े संत से बातें कर रहा था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ कि आप अलौकिक पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा, निश्चय ही मेरे भाई। उसने कहा, वर्षों पहले मैं हमेशा ही सोचता था कि मैं कुछ तो हूँ। कहा, मैंने सोचा कि मैं एक सच्चा मसीही था। और उसने कहा, तब ऊपर हमारी कलीसिया में मुझे एक पहाड़ी पर चढ़कर जाना होता था, जहाँ पर मुझे अपनी छोटी सी कार को रोकना पड़ता। और कहा, मुझे पहाड़ी पर चढ़ना था और लगभग 300 या 400 गज तक और वहाँ झाड़ियों और इत्यादि यहाँ वहाँ दिखाई दे रही थी। मैं ऊपर जा रहा था और कहा, हमारी वहाँ पर प्रार्थना की सभाएं होती थी। और कहा, मैंने सोचा कि मैं एक सच्चा मसीह था। उसने कहा, मैं सारी बाइबल को जानता था, मैंने सारे इब्रानियों पर अध्ययन किया, मैंने सारे शब्दों के सही उच्चारण पर अध्ययन किया। और कहा, कोई भी मेरे पास आए, मैं कर सकता हूँ उनसे बाइबल के बारे में यूं बात कर सकता हूँ, मैं जानता था कि मैं किस विषय में बोल रहा था। उसने कहा, एक रात मैं ऊपर कलीसिया के लिए जा रहा था, हमारी कलीसिया में बहुत सारे मतभेद थे। कहा, वहाँ पर एक दूसरे के विरोध में छोटे छोटे झुंड थे, आप जानते हैं ये किस तरह से बढ़ते जाते हैं। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, मैं अपनी पहाड़ी के रास्ते पर चलकर जा रहा था और अचानक ही मैं सचेत हो गया कि कोई तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और उसने कहा, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रुककर देखूंगा कि कौन था और उसे साथ लेकर और उससे कुछ बात करता हूँ जब हम ऊपर रास्ते पर जा रहे हैं। आप जानते हैं, यह एक प्रकार की अच्छी बात है कि आप थोड़ी देर के लिए रुके रहते हैं। और कहा, जब मैं ऊपर पहाड़ी पर आ गया, कहा मैं ऊपर आ गया और एक मनुष्य ऊपर पहाड़ी पर आया और कहा, उसके पीठ पर एक गठ्ठा था जो उस मनुष्य से भी बड़ा था। और कहा, वो बस हांफ रहा था और हिल रहा था और वो छोटे छोटे कदमों को ले रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कहा, भाई क्या मैं बोझ को ऊपर ढोने में सहायता कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, मैं इसे कर लूंगा। कहा, मैंने उसके हाथों की ओर देखा, कहा तब मैं जान गया यह एक दर्शन था, उसके हाथों में घाव के निशान थे। कहा, मैं नीचे गिर पड़ा और कहा, प्रभु आप उस बोरी में संसार के पापों को ढो रहे हैं। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पापों को ढो रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें ऊपर पहाड़ी पर ले जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम ऊपर पहुँच सको। यह इसी तरह से है, यह हम केवल इसको उसको देखते हैं, हम पाते हैं कि वो हमारे पापों को ढो रहा है। क्या ये आपको छोटा महसूस करने को नहीं लगाता है? हमारे दुष्ट निर्दयी हृदय हैं, क्योंकि हम इसे कर सकते हैं। यहाँ कुछ वर्षों पहले मैं शिकार कर रहा था, जैसे आप जानते हैं कि मैं शिकार करना पसंद करता हूँ, और वहाँ उस देश में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था, वह एक दुष्ट मनुष्य था और वह हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाता था क्योंकि मैं हिरणी और हिरण के बच्चों का शिकार नहीं करता था। मैंने कहा, यह कठोरता है। मैंने कहा, तुम क्यों एक सच्चे और साफ सुथरे शिकारी नहीं बनते हो और उन बूढ़े हिरण और इत्यादि को क्यों नहीं मारते हो जो बूढ़े हैं और मरने पर हैं? परमेश्वर ने उन्हें हमें दिया है और जवान माँ और इत्यादि को छोड़ दो। उसने कहा, हे तुम एक डरपोक प्रचारक हो, वो हमेशा ही मुझे ऐसा कहता रहता था। मैंने कहा, अब देखो, यदि मुझे भूख लगी है और मैं उनमें से एक हिरण के बच्चों को चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने मुझे इसे खाने के लिए दिया है, लेकिन तुम केवल होशियार बनने के लिए उसे गोली से मारते हो, तो वो अपनी गाड़ी को निकालता और वहाँ जाकर हिरण को पुकारने लगता और वो एक तरह की सीटी को बजा सकता था जो बिल्कुल वैसे ही होती थी जैसे कि छोटा सा हिरण का बच्चा बुला रहा है। एक दिन हम झाड़ियों में एक साथ थे, मैंने उसे लज्जित करने के लिए मैंने कहा, मुझे अपने आप पर शर्म आती है। एक समय में वो 8 या 10 हिरण के बच्चों को, हिरनी और इत्यादि को मार सकता है केवल होशियार बनने के लिए। हो सकता है वह उनका एक चौथाई भाग ही वो काटता होगा और बाकी का ऐसे ही वहाँ पर छोड़ देता होगा। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हे, कहा, तुम प्रचारक लोग बहुत ही डरपोक हो। एक दिन वो वहाँ झाड़ियों के पीछे खड़ा था, वो हाथ में सीटी को पकड़े हुए था और उसने सीटी को बजाया और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे एक छोटा सा हिरण रो रहा हो। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक सुंदर सी हिरनी अपने सिर को बाहर निकाला और कदमों की आवाज करते हुए बाहर आई। आप उसकी बड़ी बुरी आंखों को देख सकते हैं और वो चौंकने लगी, वो यहाँ वहाँ देखने लगी और वह शिकारी नीचे बैठ गया। उसने अपनी बंदूक को उस हिरनी पर चलाने के लिए उठाया और हिरनी ने शिकारी को देखा, लेकिन आप जानते हैं क्या, वो उस बच्चे की आवाज को ढूंढ रही थी। उसने बंदूक की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बच्चे के लिए देख रही थी जो तकलीफ में था। आप जानते हैं, यह एक वास्तविक मातृभाव और माँ के प्रेम को प्रदर्शित करता है जो उस बंदूक के सामने मृत्यु के लिए सामना कर सकता है उसके बंदूक की नली की ओर देखते हुए। आप यह जानते हैं क्या, यह प्रदर्शन बहुत ही महान था। वह उसके ठीक सामने खड़ा था, उसने अपनी बंदूक को नीचे फेंक दिया और वह दौड़ते हुए मेरे पास आकर और मेरे हाथों को मुझ पर डालकर मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, बिली मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसने माँ के उस साहस को प्रदर्शित होते हुए देखा था। ओह, जब संसार परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित होते हुए देखता है और उस साहस को हम मनुष्य जाति के हृदय में, ये क्या ही एक भिन्नता होगी जब हम परमेश्वर की पेंडुकी को हमारे हृदय में आने देते हैं और हमें सुशील बनाने और हमें विनम्र बनाने देते हैं। वहाँ पर पीछे उन पेड़ की झाड़ियों में मैं वहाँ पर खड़ा होकर उस छोटे से व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने उसकी प्रभु यीशु के पास अगुवाई की और तब से लेकर वह एक अच्छा और साफ सुथरा शिकारी है। निश्चय ही उसने सोचा, उसके पास एक अधिकार है, वह वही करता था जो वो करना चाहता था। वे मेरे स्थान पर आकर यदि वे चाहते तो वे मेरे वहाँ पर मेरे अनाज को खा लेते थे। मैंने कहा, यह सही बात है, लेकिन ऐसा करना ये इंसानियत नहीं है। आपको अपने अधिकारों को छोड़ना होगा। परमेश्वर दया करे कि हम यह छोड़ दें। यहाँ कुछ वर्ष पहले, ओह वह लगभग 100 वर्ष पहले की बात है, वहाँ दक्षिण पश्चिम संयुक्त राष्ट्र में एक महान मसीह रहता था। उसका नाम डैनियल करी था। एक बहुत ही अच्छा आदमी, एक भक्ति पूर्व मनुष्य, एक संत मनुष्य, एक सच्चा मसीही, एक मनुष्य जिसके लिए हर एक ने बहुत ही अच्छा सोचा, बहुत ही प्रशंसनीय व्यक्ति था। और कहानी आगे बढ़ती है और वह मर गया और वह अवचेतन के अंदर चला गया और उसने कहा, जब वह ऊपर स्वर्ग में गया, निश्चय ही जब वो मर गया था, और जब वह उस मोतियों से जड़े हुए फाटक के पास आया, वह कार्यवाहक उस दरवाजे पर आया, कहा, आप कौन है? उसने कहा, मैं एक सुसमाचारक हूँ, डैनियल करी। मैंने मसीह के लिए बहुत से प्राणों को जीता है और मैं आज सुबह आया हूँ। मेरी धरती पर की यात्रा समाप्त हो गई है, अब मेरे पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी तरह से ऐसा किसी सुबह यह आपके लिए आएगा पापियों, इसी तरह से वह आपके लिए आ रहा है जो पीछे हटे हुए हैं, इसी तरह से वह आपके लिए आ रहा है जिन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, वो उनसे दूर है। इसके बाद सुशील और दयालु नहीं बने रहते हैं, आपने वर्षों से नहीं पुकारा है, आप शर्मिंदा नहीं होते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कब से आप में से सारी विनम्रता चली गई है, निश्चय ही। लेकिन यह आपके दरवाजे पर किसी एक सुबह को आ रहा है और जब वह सुशील पवित्र आत्मा आकर और खटखटाता है, आप तब क्यों उसे अंदर नहीं लेते हैं? इसलिए जब डैनियल करी वहाँ उस फाटक पर आया, वे अंदर गए और कहा, तो ठीक है, हम देखेंगे तुम्हारा नाम यहाँ पर है कि नहीं। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और नाम को नहीं पाया, कहा, नहीं डैनियल करी, यहाँ पर नाम नहीं है। ओह, उसने कहा, पक्का है? कहा, मैं एक सुसमाचारक हूँ। उसने कहा, मैंने मसीह के लिए प्राणों को जीता है। कहा, मैंने उन चीजों को करने का यत्न किया है जो सही है। उस कार्यवाहक ने कहा, श्रीमान मुझे आपको बताते हुए खेद होता है, लेकिन यहाँ पर डैनियल करी नाम नहीं है। कहा, मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। कहा, हमें यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है कि इस मामले को ले। उसने कहा, क्या आप अपने मामले के लिए निवेदन करना चाहते हैं? आप इसे सफेद न्याय के सिंहासन के पास ले जा सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। लेकिन कहा, हमारे यहाँ पर आपके लिए कोई दया है ही नहीं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं लेंगे, आपके लिए कोई दया नहीं है। कहा, क्या आप अपने मामले के लिए निवेदन करना चाहते हैं? उसने कहा, श्रीमान मैं अपने मामले के निवेदन करने के अलावा और अधिक क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, तो तब आप सफेद न्याय के सिंहासन पर जाकर और वहाँ पर अपने मामले के लिए निवेदन कर सकते हैं। डैनियल करी ने कहा, कि उसने ऐसा महसूस किया वह खुद से लगभग एक घंटे के समय में से होकर गुजरा। कहा वह एक ऐसे स्थान पर आया जो कि बहुत ही प्रकाशमान प्रकाशमान और प्रकाशमान होते जा रहा था। कहा जितना वह आगे गया उसे वहाँ और प्रकाश मिलता गया। जितना सूर्य हमेशा चमकता है यह उससे 100 गुना 1000 गुना चमकदार था। और कहा वह कांप रहा था। और कहा जब वह उस प्रकाश के मध्य में गया उसने एक आवाज को कहते सुना, क्या तुम धरती पर सिद्ध थे? वो आवाज उस एक प्रकाश में से बाहर आई थी। उसने कहा नहीं, मैं सिद्ध नहीं था, मैं कांप रहा था। कहा क्या तुम हमेशा ही हर एक के साथ ईमानदार रहे हो? कहा नहीं। कहा कुछ बातें मेरे मन में आई जिसके लिए मैं बिल्कुल ईमानदार नहीं रहा था। कहा नहीं, मैं सोचता हूँ मैं ईमानदार नहीं था। कहा क्या तुमने हर मामले में अपने जीवन में सच्चाई को बोला है? कहा नहीं, मुझे कुछ बातें याद हैं जो मैंने बताई हैं, जो नहीं, जो संदेह पूर्वक थी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से कभी भी सच्चा नहीं था। कहा तब क्या तुमने कभी कुछ ऐसा लिया है जो तुम्हारा नहीं था, कुछ भी पैसा और जो कुछ भी हो जो तुम्हारा नहीं था? उसने कहा उसने धरती पर सोचा था कि वह बहुत ही अच्छा था लेकिन वो दोषी था। कहा नहीं नहीं, मैंने उन चीजों को लिया है जो मेरी नहीं थी। उसने कहा तब तो तुम सिद्ध नहीं थे? उसने कहा नहीं, मैं सिद्ध नहीं था। कहा वो देख रहा था कि किसी भी मिनट जहाँ पर वो पेंडो की विश्राम कर रहा था उस प्रकाश में से धमाका होगा, तुम दोषी हो। कहा तब उसी समय उसने एक आवाज को अपने पीछे से आते सुना जो कि बहुत ही मधुर थी, किसी भी माँ की आवाज से भी मधुर थी जो उसने कभी सुनी थी। कहा वो देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने एक बहुत ही आकर्षक से चेहरे को देखा जो उसने कभी देखा था, किसी भी माँ के चेहरे से अधिक आकर्षक वो उसके सामने खड़ा था। और कहा उसने कहा पिता डैनियल करी नीचे मेरे लिए धरती पर खड़ा था। यह सच है कि वह सिद्ध नहीं था लेकिन वह मेरे लिए खड़ा हुआ था, वह मेरे लिए धरती पर खड़ा हुआ था। अब मैं स्वर्ग में उसके लिए खड़ा रहूंगा, इसके सारे पाप को लेकर और उन्हें मेरे खाते पर डाल देता हूँ। उस दिन तुम्हारे लिए कौन खड़ा रहेगा भाई, यदि तुम उसे अपने से दूर करके आशोकित करते हो? मैं अब और अधिक प्रचार नहीं कर सकता हूँ, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रिय मरते हुए मेमने, विनर्म नम्र दीन उन पक्षियों के पास घोंसले थे और लोमड़ियों के पास गुफाएं थी, लेकिन अब भी आपके पास एक स्थान नहीं था और वही महिमा का प्रभु। जब आपने जन्म लिया था उनके पास कोई भी वस्त्र नहीं थे कि वे आपको पहनाते। ओ परमेश्वर, तब ये मेरे वस्त्र मेरे किस काम के हैं? तब मेरी कार मेरे किस काम की है? मेरा सुंदर घर मेरे किस काम का है? उस दिन पर ये मेरे किस काम के होंगे? आप बिना मित्र के थे, आपका कोई मित्र नहीं रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जो आपके लिए एक सहायता का हाथ बढ़ाना चाहता हो। आपने कहा उस दिन तुम कहोगे मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। यह सब उस दिन मेरे किस काम के होंगे? प्रभु हम आपके लिए खड़े रहे प्रभु, इसलिए कि जब वो घड़ी आएगी और हम उस उपस्थिति में चलेंगे जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्व ओ परमेश्वर, जब हम पेंडुकी को सुनते हैं जो उसके पंखों के साथ उस महान प्रकाश में बैठा हुआ है, यह सारी अनंतता में से होकर चमकेगा जब आप उस प्रकाश में वास करेंगे, जब वहाँ मुझे खुद के लिए खड़ा रहना होगा, मेरा भाई चला गया होगा, मेरा पास्टर चला गया होगा, मेरी माँ चली गई होगी, मेरे पिता चले गए होंगे, मेरी पत्नी चली गई होगी, मेरे बच्चे चले गए होंगे। ओ परमेश्वर, तब मैं क्या करूंगा प्रभु, तब मैं क्या करूंगा? और हो सकता है इससे पहले आज रात ये सूरज ढल जाए, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ओ मसीह, मैं अभी आपके लिए खड़ा रहूंगा, मैं आज अपने चुनाव को करूंगा, मैं उन सारे दूसरे लोगों के बारे में बात करना छोड़ दूंगा, मैं मेरे सारे गुस्से को छोड़ दूंगा, मैं मेरे सारे भेदभाव करने को छोड़ दूंगा, मैं हर एक चीज को छोड़ दूंगा। मेरी उनको कतर लीजिए प्रभु और जो भी मेरा है उसे ले लीजिए, मुझे अभी ले ले प्रभु, मैं आपके स्थान पर खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं उनको कतरवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा सारा स्वार्थपन, सारा घमंड, सारे भेदभाव, वो सब अभी मुझ में से निकाल लिया जाए, तब मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा एक कतरे हुए उनके मेमने की नाई, मेमना जो अपने सारे अभिलाषा को छोड़ना चाहता है, वो जिसे संसार के अभिलाषा कहते हैं, वे सारे नाच गान, सारी पार्टियाँ, वे सारे अभ्रद कपड़े, श्रृंगार करना, लिपस्टिक, उंगलियों में नेल पॉलिश लगाना, सारे अपक्षपात जो संसार के जैसे दिखाई देता है। आपने कहा संसार की तरह व्यवहार भी मत करो, संसार के लोगों के साथ संगति भी मत करो, उनके बीच में से बाहर निकलो। ओ परमेश्वर मेरी सहायता करे प्रभु, आज मेरी उनको कतर दें, मुझे एक मेमने के जैसे ले लीजिए, मुझे मौन बनाइए, मैं अपने मुंह को न खोलूं, इसके बारे में कुछ न कहूं, केवल खड़े होकर और उनको कतरने दूं। ओ परमेश्वर यह क्या भिन्न बनाता है, मुझे याद है जब आपने एक बार मेरी उनको कतरा था, मेरी पत्नी को ले लिया, मेरे बच्चे को, मेरे पिता को, मेरे भाई को ले लिया, आपने मेरी उनको कतर कर साफ कर दिया, फिर भी मेरे हृदय में मैं जानता था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपने किस तरह से मुझे आशीषित किया है, आप मेरे लिए कितने भले रहे हैं, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ हो सकता हूँ, जो कुछ होने जा रहा हूँ, यह आप ही है परमेश्वर, यह आप है, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, मैं वो सब स्वीकार करता हूँ जो कुछ भी मैंने किया है और सोचा है, मेरी उनको अभी कतर ले प्रभु, मैं आपका मेमना बनना चाहता हूँ, केवल यही नहीं प्रभु, लेकिन हर एक व्यक्ति को ले लें जो इस समय यहाँ पर है, हर एक भेड़ को और उन्हें जो कोई भेड़ बनना चाहता है, आज की सुबह उनकी उनको कतर लीजिए प्रभु, उनके छोटे से कदमों को उस सुसमाचार के खाचे पर डालें, होने पाए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे कि वे ठीक अभी पश्चाताप करें, वे जान जाएं कि वे परमेश्वर के प्रति लापरवाह रहते आए हैं, और होने पाए कि उन सारी लापरवाही को कतर कर निकाल दें, सारा संसार और संसार की सारी चीजों को कतर कर निकाल दें, आज सुबह इस सब को कतर कर निकाल दे प्रभु, जिससे कि हम आपके सामने संतोष से और शांति पूर्वक नए जन्म पाए हुए मसीह की नाई खड़े हो सके, इसे प्रदान करें प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मौसम गर्म हो, चाहे मैं इसे पसंद करूँ या न करूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस दिन पर आप मेरे मामले के लिए मुकदमे को लड़ें, कहें तब वह मेरे लिए खड़ा था, अब मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा, ओ परमेश्वर इसे प्रदान करें, और जब हर एक सिर झुके हुए हैं और हर एक हृदय झुके हुए हैं, मैं सोचता हूँ आज की सुबह यहाँ पर एक जन भी ऐसा है जो ये जान गया है कि आपने अपने तरीके से यत्न किया है, आपने उन चीजों को किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, और आप अभी इस बात को आज सुबह महसूस कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी उनको प्रभु के लिए कतर कर निकाल दें और कहें आप मुझे एक सच्चा मेमना बनाएं, या आप अपने हाथ को उठाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, कोई तो कहता है प्रभु मुझे कतर, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं एक भेड़ हूँ, मैं अपने मुंह को भी नहीं खोलूंगा, मैं बस चाहता हूँ आप मुझमें से सारे संसार को काट कर निकाल दें, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे प्यारे लड़के, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, मुझे कतर प्रभु, बहन जेरती, और परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, प्रभु मुझे अभी कतर, मैं चाहता हूँ कि सारी संसार की चीजें, मैं आज की सुबह आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं एक उन कतरे हुए भेड़ की नाई खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारी संसार की चीजें मुझ में से काट कर निकाल दी जाएं, मैं आपका बने रहना चाहता हूँ और आप मेरे बने रहें, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे प्रभु, जब मैंने अपने हाथों को आपके लिए उठाया है, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, मैं आपके हाथों को देखता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे छोटी महिला, ये अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे आप वहाँ पीछे जो माताएं हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, ये ठीक है, केवल ईमानदार बने रहें, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझ में से सारी चीजों को निकाल दे, जो उसके जैसी नहीं है, कोई भी मेरे पास स्वार्थी उद्देश्य है और मेरे पास कोई भी लापरवाहियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो आज की सुबह मुझमें से कतर कर निकाल दे। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। मैं परवाह नहीं करता कि वह अधिकार है या नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, केवल एक ही अधिकार है, वो है कि मैं उसके पास आऊं और वह बाकी की बातों को कर लेगा। क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा पापी है जिसने कभी एक बार भी मसीह को स्वीकार नहीं किया हो और कभी बचाया नहीं गया हो और वह चाहता है कि उसे आज की सुबह इस प्रार्थना में याद किया जाए? पापी मित्र, क्या आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और अपने हाथों को उठाकर कहेगा, मुझे याद करे भाई ब्रैनम, मैं एक मसीह नहीं हूँ और मैं नहीं जानता किस समय पर मैं परमेश्वर से मुलाकात करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ठीक अभी प्रार्थना के शब्दों में याद किया जाए जब आप बंद कर रहे हैं, तो ठीक है, क्या आप अपने हाथों को मेरे लिए ऊपर उठाएंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? वो देख रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे छोटी महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। कोई और है? मैं चाहता हूँ, मैं चाहता। कितने लोग यहाँ पर हैं जो पीछे हटे हुए हैं? ओह, आप कहते हैं भाई ब्रैनम मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन देखो यह विनम्रता का पिंडुकी आप में से चला गया है भाई, तो वहाँ पर कुछ तो गलत है, वहाँ पर कुछ तो गलत है जब आप एक दूसरे को धारण नहीं कर सकते हैं, जब आप अपने हृदय की गहराई से हर एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने जो भी किया हो या उन्होंने कुछ भी कहा हो, यदि आप उन्हें अपने हृदय की गहराई से क्षमा नहीं कर सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम हर एक के अपराधों को अपने हृदय से क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अब क्या हो यदि इस गर्म मौसम में, क्या हो यदि परमेश्वर आपको आज बुलाता है जबकि वहाँ पर एक सोता खुला हुआ है, एक कलीसिया तैयार है, पवित्र आत्मा यहाँ इस इमारत के कोने पर बैठा हुआ है, ठीक नीचे आकर और वापस आपके हृदय में आने को तैयार है और आपको सुशील और शांतिपूर्ण बनाने के लिए? मुझे क्या करना चाहिए भाई ब्रैनम? केवल एक मेमना बन जाए। पवित्र आत्मा ठीक नीचे उतर कर आएगा जब आप एक मेमना बन जाते हैं। लेकिन यदि आप गलत उद्देश्य को लेते हैं, आपके पास गलत विचार है, आप अपने तरीके को चाहते हैं और इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब पवित्र आत्मा कभी भी नहीं आएगा। अब अपने सिरों को झुकाने के साथ मैं सोचता हूँ आप में से यदि कोई अपने हाथों को उठाता है। अब यीशु ने कहा, वह जो मेरे वचनों को सुनकर और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन होगा, जो कभी भी न्याय पर नहीं आएगा, लेकिन वह मृत्यु से जीवन की ओर पार कर चुका है। संत यूहन्ना 5:24। लेकिन अब यदि आप वेदी पर आकर यहाँ पर घुटने टेकना चाहते हैं, तो आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें जब तक कि वो सुशील शांतिपूर्ण महसूस नहीं करते हैं जिसे आपने एक बार प्राप्त किया था या प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास वो वापस आ जाए। जबकि हमने अपने सिरों को झुकाए रखा है, जब हम गाते हैं वहाँ पर एक लहू से भरा हुआ सोता है, मैं चाहता हूँ कि आप आकर घुटने टिकाकर और प्रार्थना करें। हर एक जन अब जो आना चाहते हैं यहाँ पर वेदी के घेरे पर और थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें। वहाँ पर एक लहू से भरा हुआ सोता है जो इमैनुअल के नसों से बह रहा है, और पापी लोग उसके नीचे आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, ठीक यहाँ पर आकर घुटने को टेकें। छोड़ अपने सिर को झुकाने के साथ, जैसे मैं आशा करता हूँ आपने अपने हृदय को झुकाया है। आप जानते हैं कि वो जो इस कलीसिया के गलियारे में आज की सुबह आता है और आपको खुद पर एक लज्जित महसूस करने को लगाता है, एक अश्वेत महिला, दीन सफेद बाल, सूजे हुए घुटने, जो वेदी पर जाने के लिए रास्ते को बनाती है। यहाँ कुछ समय पहले एक अश्वेत पुरुष जो बचाया गया था, उस गुलामी के समय की बात है, वह वहाँ पर जाकर और जब वह बचाया गया था उसने अपने मालिक से कहा कि वह आजाद हुआ है। उसने कहा, तुम क्या हुए हो? कहा, मैं आजाद हुआ हूँ। तब उसने उसे आजाद कर दिया। यहाँ आज की सुबह कुछ और लोगों का झुंड उद्धार के लिए आगे आ रहा है। कहा कि वो आजाद हो चुका है। हर एक जन प्रार्थना में रहे और दृढ़ प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं तो जब पवित्र आत्मा लोगों से व्यवहार कर रहा है, लोगों को निर्णय को लेने को लगा रहा है। उसने कहा, मोसे क्या तुम कह रहे थे कि तुम आजाद हो गए थे? कहा, जी हाँ श्रीमान। मालिक, मैं आजाद हूँ। कहा, यदि तुम आजाद हो तब मैं भी तुम्हें आजाद करता हूँ, जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। जब वह मरने पर था, उसके बहुत से श्वेत भाई लोग उसे देखने के लिए गए, और जब वे आए, उसने कहा, मैंने सोचा वो एक कोमा और चेतन में चला गया था। जब वह उठा, उसने कहा, मैंने सोचा कि मैं मर गया था। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। ठीक यहाँ पर आकर घुटने को टेके, वहाँ कहा, मैंने सोचा कि मैं मर चुका था। कहा, तुमने क्या देखा मोसे? उसने कहा, जब मैं उस फाटक पर चलकर गया, मैंने उसे देखा। कहा, मैं वहाँ पर खड़े होकर और उसकी ओर देख रहा था। और कहा, वहाँ पर एक दूत आया था और कहा, आओ मोसे, तुमने सुसमाचार को बहुत वर्षों तक प्रचार किया है, तुम्हारे लिए एक वस्त्र और एक ताज को ठहराया गया है। उसने कहा, मुझे वस्त्र के लिए और ताज के लिए मत बताओ, मैं वस्त्र को और ताज को नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल उसको देखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि किसी भी मसीह का ऐसा ही व्यवहार होता है। यहाँ कुछ समय पहले वहाँ ऊपर शिकागो में मैं एक कोलिजियम, मेरा मतलब संग्रहालय में था, और मैं वहाँ पर इधर उधर देख रहा था। मैंने एक बूढ़े निग्रो को देखा, उसका पूरा सिर सफेद भालों से घिरा हुआ था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसके हाथ में उसकी टोपी थी। मैंने उसकी ओर देखा, वो एक छोटे से स्थान के अंदर देख रहा था, और उसने पीछे की ओर छलांग लगाई और उसके अश्वेत गालों से आंसू गिरने लगे और वह प्रार्थना करने लगा। मैंने उसे थोड़ी देर के लिए देखा, उसने फिर से वहाँ पर देखा और वह फिर से रोना आरंभ किया और वहाँ पर चलकर गया और उससे कहा, श्रीमान। उसने कहा, कहो श्वेत मित्र। मैंने कहा, मैं आपको देखता हूँ, आप किस बात से इतने उत्तेजित हैं? आप किस विषय में इतने उत्तेजित थे? उसने कहा, श्रीमान, यदि आप मेरे स्थान पर महसूस कर सकते हैं, मैं कठोरता से घिरा हुआ था। कहा, मैं एक समय गुलाम था। उसने कहा, यहाँ पर इस एक छोटे से कांच के ढांचे में वहाँ पर एक वस्त्र रखा हुआ है। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ यहाँ एक वस्त्र है, लेकिन इसके बारे में क्या विशेष है? उसने कहा, वहाँ पर जो स्थान है, कहा, वो अब्राहम लिंकन का लहू है। कहा, उस लहू ने गुलामों की पट्टी को मुझ पर से निकाल दिया है। उसने कहा, अब श्वेत व्यक्ति, क्या तुम भी इसी प्रकार से उत्तेजित नहीं होंगे? मैंने अपने हाथों को उसके बूढ़े कंधों पर रखा। मैंने कहा, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, मैं एक और लहू को जानता हूँ जो मुझे उत्तेजित कर देता है। उसने कहा, मैं भी उस लहू को जानता हूँ श्रीमान। मैंने कहा, उसने मुझ में से उस गुलामी के पट्टे को निकाल दिया है। एक समय मैं रविवार को वहाँ पर जाता और जुआ खेलता और इस तरह से करता रहता और गंदे लतीफों को सुनाता था, और ओ परमेश्वर, मैं इसे किस तरह से करता रहता। फिर भी वहाँ मेरे हृदय पर दाग होता है जब मैं ऐसा करता, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, उसने उस पट्टी को मुझ पर से निकाल दिया है, अब पूरी तरह से निकल गई है। वह मेरे स्थान पर खड़ा हुआ था। यहाँ कुछ समय पहले मैं एक स्त्री की ओर देख रहा था और वह बहुत ही अश्लील महिला थी। मैं उसे दोषी ठहराना चाहता था। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, तब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि मैंने देखा मेरे पाप बिल्कुल उसकी तरह बहुत थे। और मैं वहाँ पर चलकर गया और उसके पास बैठ गया और मैंने उसे लज्जित किया, उसे बताया मैं एक सेवक था। उसके दो लड़के मित्र थे, वो महिला लगभग 65 या 70 वर्ष की थी। उसके लड़के मित्रों ने वहाँ पर घुटने टेक दिए और अपने हृदय को मसीह के लिए दे दिया। ओह प्रभु, क्या ही यह भिन्न बात है! क्या आप नहीं करेंगे? क्या आपने बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं आज की सुबह? क्या आपका हृदय अभी इतना काला और गंदा है, इतना तक कि पवित्र आत्मा भी इसे छू नहीं सकता है? हो सकता है उस पेंडुकी ने उसकी अनंत उड़ान को भर लिया हो, यह हमेशा के लिए चला गया हो। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रिय। एक छोटी लड़की चलकर आ रही है। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे हृदय प्रिय। आप कहेंगे, वह छोटी लड़की कुछ भी नहीं जानती है। ओह हाँ, वह जानती है। उसने बस बहुत सारी किताबों, मैगजीन और पुरानी प्रेम कथाओं को नहीं पढ़ा होगा जैसे आपने पढ़ी है। यही वो वजह है, वह निर्बल है। यीशु ने कहा, उन छोटे बालकों को मेरे पास आने से मत रोको। कोई तो और है जो यहाँ पर आज की सुबह जुड़ने के लिए आना चाहेगा? वेदी खुली हुई है कुछ और क्षणों के लिए। तब हम कुछ देर तक एक बार फिर से गीत को गाएंगे। तब हम उनके लिए प्रार्थना को करेंगे जब पश्चातापी पापी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उस मरते चोर ने देखकर आनंद किया। वो सोता निश्चय ही सब कुछ चला गया है, वह दीन मनुष्य समाप्त हो गया था। और वहाँ पर हो सकता है मैं भले ही भ्रष्ट था, जब उसने क्या अब आप यहाँ पर नहीं आना चाहेंगे, क्या आप नहीं आना चाहेंगे, आप जो अच्छी तरह से जानते हैं। बाइबल ने कहा यदि आप अच्छा करना जानते हैं और नहीं करते, आपके लिए यह पाप से भी बढ़कर है। क्या आप नहीं आना चाहेंगे, आप जानते हैं कि आप गलत हैं, अपने मार्ग को बनाकर और वेदी के आसपास घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें आप खेदित हैं जिस तरह से आपने उसके साथ व्यवहार को किया है। वो पवित्र आत्मा वापस आकर आपको विनम्र और सुशील और फिर से शांति देगा। क्या आप नहीं आएंगे? याद रखना, यदि आप मरते हैं और वह आपके लिए चला गया है, वहाँ आपके मामले का मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है। वह चाह रहा है कि आज सुबह आप उसके लिए खड़े रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई। वो रुका हुआ है, क्या इतने ही हैं? केवल 15 लोग ही कलीसिया में ऐसे हैं जो सचमुच ऐसा महसूस करते हैं कि वे दोषी रहे हैं? क्या आपने शांतिपूर्वक नम्र सुशील और शांत जीवन को जिया है? आप इसे पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित किया गया है। क्या आप क्षमा करते हैं? क्या आपका कोई भी शत्रु नहीं है? क्या आप पहले की तरह जी रहे हैं? पापियों के दोष के ऊपर क्या आप मूर्ति पूजकों के जैसे नहीं जीते हैं? आप भिन्न जीवन को जीते हैं? क्या आपके जीवन का सारा तरीका भिन्न है? क्या वह सुशील पवित्र आत्मा आपके हृदय पर बैठा हुआ है, आपको शांतिपूर्वक जीवन जीने को लगाता है और सारे लोगों के बीच में शांत और प्रेमी? क्या आपके पड़ोसी और वे सब जानते हैं और आपके संगी साथी जानते हैं कि आप एक सुशील शांत विनम्र दीन मसीही हैं? क्या वह परमेश्वर का पेंडू आपके साथ है? क्या आपको पक्का है? हो सकता है कि यह आपका आखिरी मौका हो, तो ठीक है। तब आप जो यहाँ वेदी पर हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आपका न्याय नहीं होना है, उस पवित्र आत्मा ने आपके लिए न्याय को लाया है। और आपने अपने अधिकारों को पकड़े रखने की कोशिश नहीं की, कहते हुए मैं बहुत समय से एक मसीह रहा हूँ, मुझे वेदी पर नहीं जाना है। आप में से कुछ लोग आप यहाँ इस वेदी पर पहली बार आए होंगे। यदि मैं चाहता तो मैं एक पापी बने रह सकता हूँ, यही मेरे अधिकार हैं। जी हाँ, यह सही है, आपके पास एक खुले हुए चुनाव का अधिकार है। आप कैसे भी चाहे कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने अधिकारों को आज की सुबह छोड़ दिया है। वे कहते हैं, वे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं मसीह होने का दावा करते आ रहा हूँ और फिर मैं वेदी की ओर जा रहा हूँ, वे लोग क्या कहेंगे? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? उसने आपको कहा कि आ, और तुमने वही किया है। अब आपने अपने अधिकारों को छोड़ दिया है। आप यहाँ पर सुशील पवित्र आत्मा को पाने के लिए आए हैं कि आज पवित्र आत्मा अपने स्थान को आपके हृदय में ले। मैं जानता हूँ वो इसे करेगा, मैं जानता हूँ वो करेगा, उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा। वहाँ ये बस इसके लिए सहायता नहीं कर सकता है, मैं बस उसके आने को रोक नहीं सकता हूँ। वह विनती कर रहा है, रो रहा है, मर गया और इत्यादि जो भी है, उस स्थान पर आने के लिए वह आपके लिए आना चाह रहा है। और आपकी मृत्यु की घड़ी में जब मृत्यु का दूत आपके बिस्तर के कोने पर बैठा हुआ होता है, वहाँ बाहर उस डरावनी चीज को देखने की बजाय, और वह जानता है आपने एक समय वेदी पर आने के लिए इनकार किया था, और तब आपका प्राण काला और गंदगी से भरा हुआ था, अब समय नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी जोर से रोएं। ऐसाओ ने पाप किया उसके अनुग्रह के दिन में, और उसे एक भी मौका नहीं मिला। वह बहुत जोर से रोया था, उस एक स्थान को पाने का यत्न कर रहा था ताकि सही कर ले, लेकिन वो इसे नहीं कर सका था। परमेश्वर ने उसे आखिरी बार पुकारा था। लेकिन आप यहाँ पर आकर आज की सुबह अपने सारे अधिकारों को छोड़ते हैं और सारे मित्रों को और आपकी सारी भावनाओं को और हर एक चीज को आप अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं, यहाँ पर घुटने टेक कर और आप परमेश्वर से बात करते हैं। मैं आपको प्रभु के वचन से बता रहा हूँ कि मसीह ने कहा, वह जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। अब जब आप वहाँ वेदी पर हैं, पश्चाताप करें और उससे कहें कि जो आपने किया है उससे आप खेदित हैं। यही वो मामला है कि लोग जब बपतिस्मा लेते हैं उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, वे बस पूर्ण रूप से पश्चाताप नहीं करते हैं। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देने का यत्न करता है, वह चाहता है कि आप विनम्र और सभ्य और शांत बने। यही वो कारण है आप उसी स्वार्थ को अपने हृदय में लिए हुए उठते हैं। ओह, आप हो सकता है उठकर चिल्लाए होंगे, अन्य भाषा में बोले होंगे या कुछ भी ऐसा किया होगा, यह बात यह नहीं बताती कि आपके पास पवित्र आत्मा है। आपको एक अलग ही व्यक्ति बनकर उठना होगा, आपको सुशील शांत नम्र और दीन बनकर उठना होगा और पवित्र आत्मा आपके साथ बना रहता है। अगले वर्ष हर समय पीछे मुड़कर और मार्ग को देखें कि आप इतना दूर आ गए हैं। देखो आप जमीन से हर समय कितना ऊपर आ रहे हैं, यही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, सुशीलता, संयम, विश्वास है। आप केवल पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें कि आप ठीक अभी उसे चाहते हैं, वो इसे करेगा। वहाँ पर छोटी लड़की, प्रिय तुम भी वैसा ही करो, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हारी माँ तुम पर हाथ रखे हुए खड़ी है। यह प्रिय बूढ़ी अश्वेत महिला जो यहाँ पर है वो वेदी पर झुकी हुई है। हो सकता है कि आपको मकई की रोटी और जई अमेरिकन भोजन खाना पड़े, आपको किसी गली कोने में रहना पड़े, मैं यही सब जानता हूँ बहन। परमेश्वर आपके हृदय को आशीष दे। वहाँ पर आज की सुबह उस महिमा में एक महल आपके लिए तैयार है, सही है। इस वेदी की ओर देखें और देखो उस एक महिला को जो बूढ़ी हो रही है और उस एक जवान महिला को जो अपने सिर को झुकाए हुए है, एक पूर्ण सफेद बाल वाली महिला। ओ परमेश्वर, देखो वो पुरुष घुटने टेक रहा है, साथ ही कुछ लोग और भी यहाँ पर हैं। केवल पश्चाताप करें, उससे कहें कि आप खेदित हैं, उससे कहें अब आप ऐसा और नहीं करेंगे। उसके अनुग्रह के द्वारा आप अपने सारे पक्षपात को आज के बाद से लेकर खत्म कर देंगे। आप एक सभ्य और शांत बनना चाहते हैं, आप नम्र बनना चाहते हैं और वहीं जाएंगे जहाँ पर वो आपको अगुवाई करता है। जब लोग कुछ तो कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना सही दिखाई देता है। आप अपने आप अपने पड़ोसियों के बारे में बात करने के अधिकारों को छोड़ने जा रहे हैं। आप इशू के बारे में बात करेंगे, आप केवल वही बात करेंगे जो बिल्कुल सही है। आप बाहर एक हत्यारे की तरह नहीं जा रहे हैं, आप बाहर एक निर्दोष व्यक्ति को दबोचने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप एक सच्चे मसीहो के साहसिक किरदार को निभाने जा रहे हैं और आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। आपको किसी को नहीं कहना होगा कि आप एक मसीह हैं। यदि आप एक मसीह हैं, तो वे केवल इसी से समझ जाएंगे। जब आप बोलने लगते हैं, वे इसी से जान जाएंगे। आप अंदर से और बाहर से मुहर बंद हैं। अब जब आप अपने हृदय को नम्र करते हैं, अभी पश्चाताप करें, परमेश्वर से कहें आप खेदित हैं, आप इसे ऐसा और नहीं करेंगे, आप अपने आप से शर्मिंदा हैं जिस तरह से आपने व्यवहार को किया है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं ठीक उसके बाद और शांति तब आपके हृदय पर आ जाएगी, बिल्कुल वही शांति जैसे एक नदी आपके प्राण के ऊपर बहती हुई आ रही हो। हो सकता है आप नहीं चिल्लाएं, हो सकता है आप अन्य भाषाओं में नहीं बोलें, हो सकता है आप ऊपर और नीचे नहीं कूदें, लेकिन आप इस वेदी से जब उठकर जाएंगे कुछ तो आपके साथ होगा, कुछ तो आप में होगा जो आपको उस पुराने मजबूत क्रूस पर लंगर कर देगा जब तक आप जीवित हैं। अब प्रार्थना करें जैसा मैं करता हूँ, स्वीकार करें। हमारे स्वर्गीय पिता, ये अयोग्य सृष्टियाँ इस गर्मी में, आज की सुबह कमरा पसीने से लथपथ है, इस पसीने से भरी हुई कोठरी में, लेकिन परमेश्वर आपने हमारे पसीने को निकाल दिया है। पवित्र आत्मा नीचे उतर कर आया है, लोगों को मनवाया है कि वे गलत थे, वह पाप कर रहे थे, उनकी आत्माएं अहंकारी थी, वे लड़ाकू थे, ताक झांक करने वाले, सब कुछ जानने का ढोंग करने वाले, वे पश्चाताप करना नहीं चाहते थे, जिन्होंने उनके विरोध में कुछ गलत किया था उन लोगों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लेकर और उनके सुशील हृदय के अंदर इसे स्थापित कर दिया और कहा, अब क्या तुम वापस आना चाहते हो जहाँ पर तुम पहली बार तुम वेदी पर आए थे? क्या तुम वापस आना चाहते हो जहाँ पर तुम हर एक जन को प्रेम करो और मुझसे प्रेम करो जो न खत्म होने वाला प्रेम है? तब केवल उठकर वेदी पर आ जाओ। उन्होंने ऐसा किया है प्रभु। अब मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके विचारों को पवित्र करेंगे प्रभु, उनके हृदय को पवित्र करेंगे, उन्हें सुशील और शांतिपूर्ण बनाएंगे। होने पाए उनके पश्चाताप करने के बाद वे अब इस वेदी पर से उठें, अपने जीवनों को आपको देते हुए अपने घरों की ओर वापस जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बात जगह लेने दो। यदि पति नाराज हो जाता है या पत्नी नाराज हो जाती है या पड़ोसी नाराज हो जाता है या कोई तो जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं या मेल जोल करते हैं, मैं तो केवल एक मेमने के जैसा बनना चाहूँगा। आखिरकार पलटा आपके लिए ही है, मैं फिर से उसे भर दूंगा। यहोवा यो कहता है, हमने किस तरह से इसे होने के लिए पाया है प्रभु, केवल शांत खड़े रहें और सभ्य बने रहें। देखो परमेश्वर तब उसके मेमने के लिए नीचे आता है। निसंदेह निश्चय ही वो अच्छा चरवाहा उनके लिए अपने जीवन को देता है। वह तब नीचे उनके भेड़ों के लिए आता है और वह उनकी अगुवाई करेगा। शापित है वो जो उन्हें ऊपर क्रूस पर चढ़ाते हैं, शापित है वो जो उनके विरोध में एक शब्द कहता है, कहा उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। उसके दूत हमेशा ही मेरे पिता के चेहरे को देखते हैं जो स्वर्ग में है। देखा, ओ परमेश्वर, हम चाहते हैं जब तुम उनके लिए करते हो तुम मेरे लिए करते हो। इसलिए परमेश्वर, मैं एक सुशील बनना चाहता हूँ। मैं भी आज सुबह अपने आप को वेदी पर रखता हूँ, केवल आज की सुबह नहीं लेकिन हर एक सुबह और हर एक दिन। मैं सुशील और शांत और यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ। इसे प्रदान करे पिता, ऐसा होने के लिए अब हमारी सहायता करे। वो अथाह प्रेम की तरंग हमारे प्राणों पर उमड़ने लगे। शांति शांति, वो अद्भुत शांति जो ऊपर पिता से नीचे आ रही है, क्या आप इसे अभी अपने हृदय में महसूस नहीं करते हैं? मेरी आत्मा के ऊपर हमेशा के लिए हालेलुया हालेलुया। शांति शांति अद्भुत। बेन जेरटी ने कहा, सारी कलीसिया से कहें वो भी दोषी है, लेकिन उसने पियानो को अपनी वेदी बनाया है। जब वो वेदी पियानो को उसने उसकी वेदी को बनाया है, उसने कहा कलीसिया से कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करें। जब वो वहाँ पर बैठी हुई है और उसके चश्मे पर आंसू बह रहे हैं, यह पुलपिट मेरी वेदी है, मैंने भी पश्चाताप किया है, मेरी बाइबल गीली हो गई है। ओ परमेश्वर शांति, परमेश्वर की शांति। जो ऊपर पिता से नीचे आ रही है, ओ हालेलुया। मेरे आत्मा के ऊपर हमेशा के लिए परमेश्वर, यदि मैंने किसी के विरोध में पाप किया है आपके विरोध में, तो इसे आप निकाल दीजिए प्रभु। आज की सुबह मेरी छोटी सी कलीसिया से पापों को निकाल दीजिए। कितने लोग अभी ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करता है और शांति का पेंडुकी आपके हृदय में फिर से बैठ जाता है। वह ठीक अभी उड़कर वापस आ चुका है, अपने स्थान को ले लिया है। पवित्र आत्मा अभी वापस आकर और कहता है, मेरे बच्चे, मैं इतने समय से रुका हुआ था कि तुमसे प्रेम करूं, लेकिन तुम मुझे बस करने नहीं देते थे। मैं तुम्हारी पुरानी स्वार्थी आत्मा के साथ नहीं रह सकता था, लेकिन अभी जब तुमने इसे समर्पित किया है, मैं आज सुबह तुम्हारे हृदय में वापस आ गया हूँ। कितने लोग इस तरह से महसूस करते हैं? अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। यह ठीक है, सभी जो सारे वेदी पर हैं, ओह ये अच्छी बात है। कितने लोग वहाँ श्रोता गण में इस तरह से महसूस करते हैं? अपने हाथों को ऊपर उठाएं। ओह हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस नरम समर्पण के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे कि अपने हाथों में एक सेब को लेकर इसे मसलना, इसे कुचलना, जब तक ये पूरी तरह से नरम नहीं हो जाए, इतना तक कि एक छोटा बच्चा नीचे बैठकर और इसे खा सकता है। इसी तरह से हम अपने हृदय को चाहते हैं प्रभु, इसे अपने कील जड़े हुए हाथों में ले ले, तब इसे कुचले, ये कहते हुए कि बच्चे क्या तू नहीं देखता कि तूने मुझे दुख पहुंचाया था। तुम मुझे दुख दे रहे थे जब तुम इस तरह पकड़े हाथों को छोड़कर चले जाते थे, तुम मुझे दुख पहुंचा रहे थे। ओह, मेरा हृदय तब तुम्हारे लिए लहूलुहान हुआ जब मैंने तुम्हें फलाना फलाना चीजों को करते हुए देखा, लेकिन अब मेरे हाथों में तुम्हारा हृदय है, मैं इसे वास्तविक नम्र बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे इस तरह से बनाऊं जिससे कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं और इसमें रह सकूं। मैं आज की सुबह वापस उड़कर उस बसेरे पर आना चाहता हूं। मैं वापस उड़कर डेरा डालना चाहता हूं। खुद को तुम्हारे साथ बने रहने देना चाहता हूं। इसे प्रदान करे परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं, इसे प्रदान करें आपकी महिमा के लिए। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। यीशु के जैसा बनूं, क्या इस तरह से आराधना करने को आप पसंद नहीं करते हैं? ओह, मेरा बस प्राण नहा रहा है। धरती पर मैं उसे इस तरह से आराधना करने वालों में नीचे आते देखना और आपका हृदय वास्तव में सभ्य महसूस नहीं कर रहा है, मेरा हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है। धरती से महिमा की यात्रा, मैं केवल उसके समान होने के लिए मांगता हूँ। क्या आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे जब हम इसे गाते हैं? यीशु के जैसा बनूं, जोए, क्या तुम ऊपर आकर आज की सुबह प्रार्थना करोगे? भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ वेदी पर एक स्थान को देख रहा हूँ भाई जोए, परमेश्वर आपको आशीष दे। धरती से महिमा की यात्रा, मैं केवल उसके समान होने के लिए मांगता हूँ। मैं जानता हूँ यह गर्म है मित्रों, मैं जानता हूँ ऐसा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप मेरी तरह ही महसूस कर रहे हैं। ओह, बस मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं दूर उड़ सकता हूँ। वह कितना प्रेमी है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? ओ परमेश्वर, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? मैं किस बात के लिए आगे आया हूँ? ये क्या होने जा रहा है? मैं अब से लेकर 100 वर्षों तक क्या होने जा रहा हूँ? क्या हो यदि वो मेरे पास नहीं होता है? कहाँ, कहाँ पर दूसरा गढ़ है? बैतलियम की चरनी से एक परदेशी आगे आया, धरती पर मैं उसके जैसा बनने को तरस रहा हूँ। सारी जीवन की यात्रा में से होते हुए जो धरती से महिमा की है, मैं केवल उसके जैसा बनने के लिए मांगता हूँ। अब एक साथ मिलकर यीशु के जैसा बनूं, प्रभु की स्तुति हो। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, संसार के जैसा नहीं, आपके जैसा, उसके जैसा बनूं। सारी जीवन की यात्रा में से होते हुए जो धरती से महिमा की है। मैं केवल जब आपने अपने सिर को झुकाया हुआ है, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो पवित्र आत्मा को अप्रसन्न कर रहा है, किसी को तो बुलाया गया है। मैं उसका भविष्यवक्ता होने के नाते यीशु के नाम से कहता हूँ, मैं उसके हृदय को घायल होता हुआ देख सकता हूँ। वहाँ पर कोई तो है जो उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं है, जिसे आना चाहिए। क्या तुम अब नहीं आना चाहोगे? सारी जीवन की यात्रा में से हाँ बहन, लेकिन वहाँ पर कोई और भी है। महिमा, मैं केवल उसके लिए, उसके जैसा होने के लिए मांगता हूँ, केवल यीशु के समान बनूं। यही सारी मेरी इच्छा है, दीन और अधीन और नम्र उसके समान बनूं। धरती पर मैं, क्या अब आप आगे आना नहीं चाहोगे? परमेश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। आप एक गिनती में हैं। वहाँ से होते हुए मैं जानता था कि तुम आ रहे हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने वहाँ श्रोतागण की ओर देखा और मैंने अब तक की सबसे एक भयानक छाया को देखा जो वहाँ पर मंडरा रही थी। वो पवित्र आत्मा अब यहाँ पर है, वह ठीक अभी मुझ पर है। यह पवित्र आत्मा को शोकित करना है। यीशु के समान मनु, उसने क्या किया? वो वहीं पर गया जहाँ पिता ने उसकी अगुवाई की। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई। यह अच्छी बात है, आगे की ओर बढ़े और घुटने को टेकें। धरती पर मैं तरस, अब यह उस पुराने समय के जैसे अंगीकार करना है, ठीक करना है, सही करने का समय है। आगे आ जाएं। मैं अब भी महसूस करता हूँ वहाँ पर और भी है। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छी बात है, पवित्र आत्मा हमेशा ही सही होता है। आगे आ जाएं, ये अच्छी बात है। ठीक, आगे बढ़ते जाएं। उसके यीशु के जैसा बनूं, उसके जैसा, हाँ यीशु के, धरती पर मैं, ओ प्रभु यह अच्छा है। इसी तरह से बस इस गलियारे को भर दे। ठीक आगे आकर और प्रार्थना करें। सारी जीवन की यात्रा में से होते हुए धरती से महिमा की ओर केवल पश्चाताप करें। परमेश्वर से कहें कि आप खेदित हैं, बस इतना ही आपको करना है। उसके जैसा बनूं, क्या आप और भी लोग आगे नहीं आना चाहेंगे? उसके, ये अच्छा है। बस आंसू बहते जा रहे हैं, या ऊपर आ जाएं। उसके जैसा बनूं, आप क्या करोगे? कौन आपके लिए खड़ा होगा? हो सकता है आज रात को कौन आपके लिए खड़ा होगा जब आपको मृत्यु आपके आस्तीन पर आ जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया है, पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके नजदीक बैठा है। यह वही है जो चाह रहा है कि आप आ जाएं। सारी जीवन की यात्रा में से होते हुए धरती से महिमा की ओर केवल पश्चाताप करें। कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मैं यह नहीं करना चाहता हूं। आप मेरे लिए खड़े होंगे यदि मैं अभी आपके लिए खड़ा होता हूं तो, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए खड़े रहें और मैं आपके लिए आज के बाद से खड़ा रहूंगा। मैं एक मसीह के जैसे जीने जा रहा हूं। मैं अपने तरीकों को बदल दूंगा। मैं सुशील और शांत बना रहूंगा। मैं हरेक को उनकी बातों को बोलने दूंगा और आदि आदि। मैं तो केवल आपके सामने दीन और शांत बना रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से मसीही होने का दावा करते हो, आप किस कलीसिया से ताल्लुक रखते हो, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। बस आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाहर निकलकर ठीक आगे बढ़ें बच्चे। परमेश्वर अभी आपसे बातें कर रहा है। यदि आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा ने आज सुबह मुझसे बातें की है, कहा उस पुकार को करना, वहाँ पर बहुत से लोग हैं। यही वो दिन है, यही वो समय है। वहाँ पर पीछे 5 और 6 और हैं जिन्हें सचमुच में अब आना चाहिए। याद रखें भाइयों और बहनों, मैं ठीक अब आपकी ओर देख रहा हूँ। मैं उन काली छाया को आपके ऊपर मंडराता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा होगा कि अब आगे बढ़े। यीशु के समान बनो, क्या आप उसके जैसा नहीं बनना चाहते हैं? सभ्य, शांत, नम्र, सुशील। परमेश्वर आपको आशीष दे। जवान पुरुष, परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता जो अपने बालक के साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। पापी मित्र, ये अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते रहें। बहन, अब बाहर निकलकर बढ़ें, अपने लिए एक स्थान को ढूंढें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय बहन, आपके पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। आप बिस्तर पर बेबस पड़ी हुई थी, मर रही थी, अब यहाँ पर आप चलकर वेदी पर आ रही हैं। आपके नरम हृदय के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा अब फिर से बात कर रहा है। पश्चाताप करें, बस सीधे परमेश्वर को पुकारें, केवल प्रार्थना करें, अपने तरीके से प्रार्थना करें। आप ही वो एक हैं जिसने पाप को किया है, अब आप ही वो एक हैं जो प्रार्थना को कर रहे हैं। परमेश्वर से कहें कि आप खेदित हैं जो आपने किया है। इस बात को ध्यान न दें कि आपके आसपास कौन है। केवल कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं रहा था, मैं सभ्य होना चाहता हूँ, मैं कभी भी विरोध नहीं करूँगा और फिर से विवाद नहीं करूँगा। ओ परमेश्वर, ओह मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। स्वर्गीय पिता, हर एक पश्चातापी जो यहाँ वेदी पर है, अपने घुटनों को टिकाए हुए है, प्रार्थना कर रहा है। ओ परमेश्वर, होने पाए माताएं, वे पिता, बच्चे, पिता, माताएं, जो कोई भी और हैं, पड़ोसी, कलीसिया के सदस्य, डीकन, खजांची, ओ परमेश्वर, इस पुराने ढंग के आचरण के ढलते हुए समय पर आज सुबह इस गर्म कमरे में बैठे हुए हैं। पवित्र आत्मा ठीक नीचे उतर कर आ रहा है, शांति को बोल रहा है। ओ परमेश्वर, मैं उस दिन पर खड़ा होना चाहता हूँ ताकि आपको विनम्रता से ये कहते हुए सुनूं, जी हाँ, तुम वहाँ पर आकर और तुम मेरे लिए खड़े रहे, अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो आज यहाँ पर हैं, हर एक हृदय में शांति को डाल दीजिए। परमेश्वर, शांति पूर्वक और सभ्यता से मैं चाहता हूँ कि आप इसे करें। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाएं एक ऐसी अनुभूति के साथ कि इस दिन के बाद से लेकर ये उन्हें कभी भी छोड़कर न जाए। होने पाए वे नए बनकर घर की ओर जाएं, वे लोग नए लोग बन जाएं। होने पाए हर एक चीज आज नहीं बन जाए क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को नम्र किया है। आपने कहा यदि वे लोग मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए हैं, वे अपने आप को नम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब मैं उनकी स्वर्ग से सुन लूंगा। और मैं जानता हूँ आज की सुबह आप ऐसा करेंगे परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें क्षमा करें जो उनके स्थानों में अभी भी बैठे हुए हैं जिन्हें आना चाहिए था। परमेश्वर उनसे बातें करें, और होने पाए उन्हें धरती पर कभी शांति नहीं मिले जब तक कि वे अपने एक निर्णय को नहीं ले लेते हैं। प्रभु, यहाँ आकर और आपके साथ ठीक कर लें, इसे प्रदान करें। प्रभु, हर एक को अब आशीष देना। होने पाए आपकी करुणा और आपकी दया हर एक प्राण के ऊपर बनी रहे जिन्होंने पश्चाताप किया है और आज की सुबह इस कलीसिया में झुके हुए हैं। पिता परमेश्वर, मैंने इसे आपकी आज्ञा से किया है, मैंने इन लोगों को बुलाया है, वे खड़े हुए हैं। आपने कहा जो मनुष्य के आगे मेरी गवाही को देगा, मैं मेरे पिता के सामने और पवित्र दूतों के सामने उसकी गवाही को दूंगा। बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बहुत वर्षों से मसीह ही रहे हैं, लेकिन आज की सुबह वे लोग खड़े हुए हैं ताकि अपने पापों को बताएं कि उन्होंने गलत किया है, वे अप्रिय बने हुए हैं, पवित्र आत्मा उनमें से चला गया था, और बहुत सी बार वे उस सुशीलता, मधुरता, नम्रता को महसूस नहीं कर सकते हैं जिसे उन्हें करना चाहिए था। उनमें से बहुत से पापी हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन पिता वह उस अद्भुत अनुभव को चाहते हैं, वो शांति जो सारी समझ से परे है, उन्हें इस दिन में आप देना प्रभु परमेश्वर। और होने पाए वे कुल मिलाकर आपकी प्रेमी और मधुर आत्मा से भरे हुए हो जैसे हम आज इस स्थान को छोड़कर जाते हैं अपने भिन्न भिन्न घरों की ओर, एक भिन्न जीवन को जिए और एक भिन्न व्यक्ति बने, हम मसीह के नाम से मांगते हैं। वहाँ सोते पर अवसर है तो ठीक है, आप जो वेदी पर हैं खड़े हो जाएं, प्रभु परमेश्वर की ओर ऊपर देखें, यहाँ वहाँ मुड़कर एक दूसरे से आसपास हर एक जन से हाथ को मिलाएं। ओह, अब हम हर एक जन इसे गाएंगे जब हम कुछ देर के लिए खड़े हुए हैं चंगाई सभा से पहले। अवसर अवसर, जी हाँ, वहाँ पर अवसर है, वहाँ उस सोते पर आपके लिए अवसर है। अवसर अवसर, जी हाँ, वहाँ पर अवसर है, वहाँ उस सोते पर आपके लिए अवसर है। हर एक जन, अवसर, जी हाँ, वहाँ पर अवसर है, वहाँ उस सोते पर आपके लिए अवसर है। अवसर अवसर, जी हाँ, वहाँ पर अवसर है, वहाँ उस सोते पर आपके लिए अवसर है। अवसर अवसर, जी हाँ, वहाँ पर अवसर है। एक विश्वास, आप जानते हैं, एक दिन भाई जब आपकी पत्नी ने बुलाया कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, मैं सीधे उस कमरे में गया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डरो मत, आमीन। क्या वो वास्तविक नहीं है, अद्भुत है? तो ठीक है, प्रभु की स्तुति हो, मैं अब महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं विजय की ललकार को करूँ, तो ठीक है। और उसका लहू तिनके को धो देता है, क्या बताने के लिए कुछ है? यीशु बचाता है, तो ठीक है। अब भाई नेविल और भाई स्लॉटर के पास कहने के लिए कुछ शब्द हैं। महिमा, हालेलुया, हालेलुया। मैं शायद आज रात को भी यहाँ पर रहूँगा, हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर रहूँगा जब तक मुझे कहीं से कोई बुलावा नहीं आता है।